ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ہمیں جس موضوع پہ گفتگو کرنا ہے وہ ہماری سوسائٹی کا اس وقت ایک بہت ہی برننگ ایشو ہے یا ہاٹ ٹاپک ہے، اور وہ ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018۔ 2018 میں، یعنی آج سے 4 سال پہلے، ہماری قومی اسمبلی سے، پھر اس کے بعد سینٹ سے ایک بل پاس ہوا کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ہجڑوں اور خواجہ سراؤں کے حقوق کے حوالے سے بل ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ جماعت اسلامی کے جو سینیٹر مشتاق صاحب ہیں، انہوں نے ایک کمپین چلائی خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ، اور بتایا کہ یہاں ہجڑوں اور خواجہ سراؤں کے حقوق کے بجائے ٹرانسجینڈر کے حقوق کو زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے، کہ جس کو ہم زنخا کہتے ہیں۔ اس حوالے سے آج ہم نے انشاءاللہ سے گفتگو کرنی ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ بہت سے مذہبی طبقات کی طرف سے اس بل کے حوالے سے رسپانسز ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اب بعض ایڈوکیٹس کو ہم نے دیکھا کہ وہ نیچے کمنٹ کر رہے ہیں کسی مذہبی سکالر کی ویڈیو کے نیچے کہ مولوی صاحب کو کیا پتا کہ ایکٹ کیا ہے، انہوں نے کوئی ایکٹ پڑھا ہے، ان کو قانون کا کیا پتا، ان کو تو انگریزی پڑھنی بھی نہیں آتی۔ اب لوگ اس کو لائک کر رہے ہیں اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وکیل صاحب کو تو قانون کا پتہ ہو سکتا ہے اور مولوی صاحب کو پتہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اس طرح سے بھی ایک بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ، غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے آج کی اس نشست میں، ایک تو یہ ہے کہ اس ایکٹ کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے۔ اتنی انگریزی میں آپ ہم سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑی بہت کوئی تلفظ کی غلطی ہو جائے گی، باقی یہ ہے کہ اس کی جو ٹرانسلیشن ہے، اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کا جو فہم ہے، بہرحال وہ ہم سب اس کو سمجھ سکتے ہیں، انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس کو ہم آج دیکھیں گے کہ اس ایکٹ میں اصل میں ہے کیا، اور یہ جو بڑی چلاکی کے ساتھ یہ جو آرگومنٹ ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ اس ایکٹ میں تو جی یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، اور مذہبی طبقے اور مذہبی سکالر جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں، خامخا کی کمپین چلا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے ہومو سیکشویلٹی، ہم جنس پرستی عام ہو جائے گی، اس ایکٹ میں تو کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، فلاں بھی نہیں ہے۔ تو سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ آپ خود کیوں نہیں کہہ لیتے عوام الناس سے کہ بھائی یہ ایکٹ ہے، پڑھ لو، اس میں کچھ ہے کہ نہیں ہے۔ تو ہم وہی کام کرنے جا رہے ہیں کہ جس کی طرف وہ لبرل طبقہ جو ہے وہ نہیں آ رہا، وہ ایکٹ آپ کو پڑھ کے نہیں سنا رہا، وہ آپ کو وہ ایکٹ دکھا نہیں رہا۔ یہ ایکٹ آپ کو گوگل سے مل جائے گا، ٹھیک ہے، یہ میں نے حاصل کیا ہے۔ یہ دیکھیں، دی گزٹ آف پاکستان جو ہے، یہ اسلام آباد تھرسڈے میں 2018 میں مئی 24 کو یہ پبلش ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 9 پیجز میں ہے یہ ایکٹ، اس کو آپ نکال لیں اور آپ اس کو پڑھ لیں۔ تو ابھی ہم اس میں سے کچھ چیزیں جو ہے وہ میں نے ہائی لائٹ کی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ کو اگر لگتا ہے کہ یار اس سے کچھ چیزیں نکل رہی ہیں تو بس ٹھیک ہے، اس میسج کو آگے پہنچائیں اور اس کو مانیں، ایکسیپٹ کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ایکٹ کا جو نام ہے، جو اس کو ٹائٹل دیا گیا ہے، وہ غلط ہے، میری نظر میں وہ غلط ہے۔ آپ بھی اس پہ غور کریں، اس ایکٹ کو نام کیا دیا گیا؟ دس ایکٹ مے بی کال دا ٹرانسجینڈر پرسن پروٹیکشن آف رائٹ ایکٹ، یعنی ٹرانسجینڈر پرسن پروٹیکشن آف رائٹ ایکٹ۔ یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ کا نام اس کو دیا گیا کہ ان کے رائٹس کو ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں، یہ نام غلط ہے۔ اس کا نام ٹرانسجینڈر جو ہے وہ پرسنز ایکٹ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کا نام انٹرسیکس پرسنز ایکٹ ہونا چاہیے تھا۔ اب ٹرانسجینڈر سے ان کی مراد کیا ہے؟ یعنی اس ایکٹ نے خود ہی بتا دیا کہ ٹرانسجینڈر سے ہماری مراد کیا ہے۔ اس ایکٹ میں انہوں نے واضح طور پہ یہ بات لکھی ہے۔ جب آپ اگلے پیجز پہ جاتے ہیں، یہ اب آپ دیکھیں، یہ پیج نمبر جو ہے وہ 275 ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے کہ جی ٹرانسجینڈر پرسن جو ہے اس کو انہوں نے 3 حصوں میں کیٹیگرائز کیا، ٹھیک ہے۔ اور ٹرانسجینڈر پرسن کیا ہے؟ ہو از انٹرسیکس، جس کو انہوں نے بریکٹ میں خسرا لکھا ہے، with mixture of male and female genital features۔ یعنی ٹرانسجینڈر سب سے پہلے تو انٹرسیکس کو ہم کہہ رہے ہیں، انٹرسیکس سے مراد جسے آپ اپنی زبان میں، مادری زبان میں ہم کہہ دیتے ہیں مڈل سیکس۔ پیدائشی طور پہ وہ نہ میل ہے نہ فیمیل ہے، کیا ہے؟ مکسچر آف میل اینڈ فیمیل جینیٹل فیچرس۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں میل اور فیمیل کے جو اعضائے تناسل ہیں وہ مکسڈ ہیں۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ پیدائشی طور پہ اس کے بارے میں ایمبیگوٹیز ہیں، ابہام ہیں کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے۔ तो इसको हम जो है हमारे यहाँ आमतौर पर इसको हिजड़ा भी कह देते हैं, उन्होंने इसको खुसरा लिखा है, ठीक है। इसी को बाज़ुकात हमारे यहाँ ख्वाजा सरा भी कह देते हैं। तो देखें, जो तो इंटरसेक्स है उसके राइट्स की बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, हम आपके साथ हैं। और इंटरसेक्स कौन है, या हिजड़ा या खुसरा या जिसे ख्वाजा सरा कहते हैं, वो असल में कौन है? वो ना मेल है ना फीमेल है। जो पैदाइशी तौर पर आप कह लें कि जी उसके जो अज़ा हैं उनके अंदर कोई नक्स है, कोई ऐब है, जिसकी वजह से वो भरपूर मर्द भी नहीं है, भरपूर औरत भी नहीं है, लड़का भी नहीं है, लड़की भी नहीं है, ठीक है। अब ये बात की बात है कि उसकी आप सर्जरी करवा लें और उसको मेल की तरफ ले जाएं या फीमेल की तरफ ले जाएं, फिलहाल हम इंटरसेक्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि इंटरसेक्स जो है पर्संस एक्ट इसका नाम होना चाहिए था, क्योंकि इंटरसेक्स यानी ये जो असल में ख्वाजा सरा हैं या हिजड़े हैं या खुसरे हैं, ठीक है, ये असल में हमारी सोसाइटी का मज़लूम तबका है। देखिए, हमारे यहाँ जब कोई ऐसा बच्चा पैदा होता है तो वो ले आ जाते हैं घर में उसको लेने के लिए, ठीक है। वो खुसरों की अपनी कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, वो फिर उसको क्या करते हैं, उसको मांगने पे लगा देते हैं। आप भिखारियों की तरह आप देखें, वो चौराहों के ऊपर खड़े जो है वो मांग रहे होते हैं, ठीक है। तो आप ये कोई बाइज़त पेशा तो नहीं है। या फिर उनके साथ क्या किया जाता है कि जी उनको गाने बजाने पे लगा दिया जाता है, ठीक है। वो कोठों पे जाके नाचते हैं, रक्स व सुरूद की महफिलें सजाते हैं, ठीक है। फिर या वो प्रोस्टिट्यूशन की तरफ निकल जाते हैं, ठीक है। उससे भी माशरे में जो है वो बेहयाई और फाहशी और जिना और एडल्ट्री जो है वो आम होती है। तो अब एक तो वालदैन में ये अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है कि वालदैन क्या करें, पेरेंट्स क्या करें कि ऐसे बच्चों को एक्सेप्ट करें, ठीक है, और उनकी तरबियत करें। ये भी आपकी औलाद है, वो मेल नहीं है, फीमेल नहीं है। जैसे देखें, बहुत से बच्चे पैदाइशी तौर पे माजूर होते हैं, जैसे कोई बच्चा नाबीना है या कोई बच्चा ऐसा है कि मतलब उसको पोलियो हो गया, पोलियो की वजह से वो जो है वो माजूर हो गया। तो अब क्या माँ बाप उसको मतलब किसी घर से बाहर निकाल देते हैं या किसी यतीम खाने में भेज देते हैं? ऐसा तो नहीं है, उसको अपना बच्चा समझ के पालते हैं। तो इसी तरह से जो मिडिल सेक्स है, ये भी आपकी औलाद है। तो पेरेंट्स की काउंसलिंग करने की ज़रूरत है कि आप इनकी जो है वो एजुकेशन का ध्यान करें, उनकी तरबियत का ध्यान करें, फिर देखें कि उनके क्रोमोसोम्स में, उनके DNA में और उनकी जो है वो फिजिक्स में, अगर जो है वो मेल जो ऑर्गन्स हैं, जो सेक्सुअल ऑर्गन है, उनकी डोमिनेंसी है, तो उसकी सर्जरी वगैरह करवाएं, उसको ऑपरेट वगैरह करवाएं और उसको मेल की तरफ लेके जाएं। और अगर उसके अंदर जो है वो फीमेल के जो साइंस हैं वो प्रोमिनेंट हैं, तो आप उसकी फीमेल के हवाले से सर्जरी जो है वो करवाएं और उसको फीमेल की तरफ जो है वो लेके जाएं। तो ऐसा होता है, बहुत से पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की जो है वो इस तरह से सर्जरी करवाते हैं ताकि वो एक भरपूर मर्द या भरपूर औरत बन के जो है वो ज़िंदगी गुजार सकें और माशरे में, सोसाइटी में वो ऐसी बातें ना सुने कि ये जो है ना वो मर्द नहीं है या ये तो औरत नहीं है या ये हिजड़ा है या खुसरा है या ख्वाजा सरा है। और आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि ये कुछ मुश्किल नहीं रह गया, ठीक है। तो इस बात को समझे, तो इंटरसेक्स के हकूक के हम भी हामी हैं, तमाम मजहबी लोग, जमात इस्लामी हो, तंजीम इस्लामी हो, इसी तरह तमाम मसलक के उलमा, जमीयत उलमा इस्लाम, सब ये बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि इंटरसेक्स के आप राइट्स की बात करें तो हम आपके साथ हैं कि आप हिजड़ों या खुसरों या ख्वाजा सराओं के लिए, और यहाँ हिजड़ों, खुसरों और ख्वाजा सराओं से मुराद कौन है? इंटरसेक्स, मिडिल सेक्स। इनके लिए आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाएं, इनके लिए आप हॉस्पिटल्स बनाएं, फ्री हॉस्पिटल्स हों जहाँ इनकी जो है वो फ्री में इनको ऑपरेट किया जाए, ठीक है। और इनके लिए आप काउंसलिंग सेंटर्स बनाएं जहाँ इनके पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाए, इनकी जो है वो आप इनके लिए थेरापी सेंटर्स बनाएं, बिल्कुल करना चाहिए। इनको जो है आप इनहेरिटेंस में, विरासत में आप हिस्सा दें। जब इस तरह से उनको आके जो है वो उनकी कम्युनिटी वाले ले जाते हैं तो जाहिर बात उनको विरासत में भी हिस्सा नहीं मिलता। तो ये हमारे माशरे का पिसा हुआ मजलूम तबका है जिसके हुकूक की बात नहीं होती। मजहबी तबके की तरफ से भी गफलत है, स्टेट और रियासत और गवर्नमेंट की तरफ से भी है। ये होनी चाहिए, हम इसके लिए आवाज़ उठाते हैं और मेरे ख्याल में हमें इसके लिए जो है वो इस तबके के साथ खड़ा होना चाहिए। और मैंने इस पर कई सालों पहले अपने फेसबुक टाइमलाइन के ऊपर लिखा भी, उस वक्त मेरा चैनल नहीं बना हुआ था तो फेसबुक के ऊपर मैं बहुत पहले से 2012 में आ गया था, तो फिर मैंने हिजड़ों के हुकूक के हवाले से काफ़ी कुछ लिखा। खैर बहरहाल, एक तो इन्होंने कहा कि जी इंटरसेक्स है, तो ट्रांसजेंडर से मुराद अगर इंटरसेक्स है तो हम आपके साथ हैं, उनके हुकूक की बात जो आपने की है हम आपके साथ हैं। दूसरी बात जो इन्होंने की है कि ट्रांसजेंडर से मुराद क्या है? यूनिक। यूनिक क्या है? यूनिक वो है कि अच्छा, यूनिक को क्या कहते हैं? यूनिक जो है वो बेसिकली जिसको हम उर्दू में जो है वो खसी कहते हैं, अंग्रेजी में यूनिक कहते हैं और उर्दू में हम उसको खसी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप उर्दू की डिक्शनरीज देखेंगे ना, उर्दू की डिक्शनरीज, तो उसमें यूनेक का माना जो है वो ख्वाजा सरा लिखा हुआ है या हिजड़ा लिखा हुआ है। हम इस पे बाद में गुफ्तगु करते हैं। भारत, अभी आप दूसरा जो है ये कह रहे हैं कि जी एक तो ट्रांसजेंडर में जो है वो इंटरसेक्स है। हमने कहा वेल एंड गुड, ठीक है, इंटरसेक्स अगर आपकी मुराद है तो आप उसके हवाले से कानून बनाएं, लेकिन उसका नाम ट्रांसजेंडर ना रखें, उसका नाम इंटरसेक्स एक्ट रखें और उनके राइट्स की भी बात करें, हम आपके साथ हैं। दूसरा इन्होंने कहा जो है वो ट्रांसजेंडर से मुराद हमारी जो है वो यूनेक है। यूनेक कहते हैं खसी को। खसी वो है कि जिसने अपनी जो है वो पैदाइश के बाद अपने जो आज़ाए तनासुल थे ख़ास तौर पे, उनको क्या किया, रिमूव करवा दिया जो उसके टेस्टिकल्स से। देखें, असाइन मेल एट बर्थ, बिल्कुल सही डेफिनेशन की है कि पैदाइश के वक्त वो मेल था बट अंडर गोज जेनिटल एक्सीजन आर कैस्ट्रेशन, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसके जो आज़ाए तनासुल थे वो रिमूव कर दिए गए। ठीक है, इसको हमारे यहाँ उर्दू में क्या कहते हैं, खसी। जैसे हमारे यहाँ बाद जानवरों को भी जो है वो खसी किया जाता है, ठीक है, कुर्बानी की जानवर या दूसरे जानवरों को भी जो है वो खसी किया जाता है। असल में देखें ये मुग़लों के यहाँ एक रवाज था, मुग़लों के यहाँ भी और आपको इधर सल्तनत उस्मानिया में उस्मानियों के यहाँ भी मिलेगा कि वहाँ जो मलकाएँ होती थी, पहली बात है उनका जो हरम होता था महल के अंदर, जो उनकी शहजादियाँ होती थी वो अलहदा रहती थी और मर्दों का जो है वो अलहदा से जो है वो हिस्सा होता था। तो अब औरतों के जो मामलात देखता था वो एक मर्द होता था। ठीक है, जैसे उस्मानियों में आप देखेंगे, उस्मानियों की तारीख अगर आप उठा के देखें कि जो सल्तनत उस्मानिया का जो खलीफा होता था, सो कॉल्ड खलीफा जो भी है भारत, या सुल्तान होता था, तो उसकी बहुत सी लोंडियाँ और बांदियाँ होती थी, फिर जिस लोंडी और बांदी से उसकी औलाद होती थी उसको मलका का दर्जा दे दिया जाता था। लेकिन उन लोंडियों और बांदियों को जब बादशाह के सामने पेश किया जाता था तो पहले उनकी तरबियत की जाती थी, तो उनकी ट्रेनिंग और तरबियत के लिए जो है वो एक मर्द मुकरर किया जाता था, जिस मर्द को पहले वो खसी करते थे और उस मर्द को वो ख्वाजा सरा कहते थे। ख्वाजा का मतलब है सरदार और सरा महल को कहते हैं। ठीक है, तो यानी महल का सरदार, यानी महल में जो मौजूद औरतें हैं उनके ऊपर उसको जो है वो सरदार मुकरर किया जाता था। तो बेसिकली ख्वाजा सरा जो है वो खसी को कहते हैं। अच्छा, आप कहेंगे कि जी ये आपने ये चीज़ कहाँ से ली है, तो आपकी जो बुनियादी तौर पे जो आपकी डिक्शनरीज हैं, आप फरहंगे आसफिया उठा के देख लें, आप जो कौमी विरसा पाकिस्तान यानी हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो उर्दू की डिक्शनरी जो है वो कंपाइल करके उसको पब्लिश किया, आप वो उठा के देख लें। रेख्ता की एक डिक्शनरी है, रेख्ता जो लोग मतलब उर्दू से कोई थोड़ा बहुत शगब रखते हैं उनको पता है कि रेख्ता का क्या स्टैंडर्ड है, रेख्ता का क्या मेयार है। तो अभी आपको रेख्ता से हम दिखाते हैं कि ख्वाजा सरा क्या था। ठीक है, ये लिखते हैं जी ख्वाजा सरा क्या था। ख्वाजा सरा जो है वो मर्द, खुसूसन गुलाम जो हसी कर दिया गया हो और जनाने मकान में आमदोरफ्त और खिदमत पर मामूर हो। शाही ज़माने में बाज़ गुलामों और नौकरों को खसी कर दिया जाता था जो शाही बेगमात के महल में बेरोक टोक आते जाते और कामकाज करते थे, वो अफसर जो शाही महल्लात का इंचार्ज होता था। इंग्लिस्तान में करीब करीब लॉर्ड चैम्बरलैन कहते हैं। हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत के वक्त जो ख्वाजा सरा होते थे उनको शाह वक्त के मिजाज में बड़ा दखल होता था और बादशाह उनके बगैर अपने जाती और मुल्की मामलात में भी कुछ नहीं करता था। तो बेसिकली ख्वाजा सरा कौन है, ये यूनख है। यूनख जो खसी होते थे उनको ख्वाजा सरा कहा जाता था, उन्हीं को ही फिर हमारे यहाँ लिटरेचर में जो है वो हिजड़ा कहा जाता था। तो ये इनको खसी किया जाता था, खसी किया जाता था ताकि इनकी शरारत से बच सकें, क्योंकि बादशाहों ने उनको जो है वो अपने महलात में अपनी बांदियों और लोंडियों की ट्रेनिंग के लिए रखना होता था, तो वो उनको बाकायदा तौर पे खसी किया जाता था। अब ये रवाज ख़त्म हो गया, तो अब सोसाइटी में आपको ख्वाजा सरा नहीं मिलेगा। हमारे कल्चर में जो ख्वाजा सरा था यानी खसी, ठीक है, जिसके टेस्टिकल्स रिमूव कर दिए जाते थे, जो महल्लात का एक किरदार था, रोल था, वो उस्मानियों के यहाँ हो या मुग़लों के यहाँ हो, वो अब यहाँ नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि एक्सीडेंटली किसी का या किसी बीमारी की वजह से किसी के कोई आज़ाद जो है वो रिमूव करने पड़ जाए, या बाज़ुकात हम न्यूज़ में ये भी सुनते हैं कि किसी मर्द ने दूसरी शादी कर ली तो उसकी बीवी ने जो है वो इंतकामन उसका जो उज़्वे तनासुल था उसको जो है वो काट डाला। ठीक है, तो इस किस्म का किसी के साथ जो है वो हादसा पेश आ सकता है, तो इसको आप कह सकते हैं यूनाह। दूसरी चीज़ क्या है, यूनाह। यूनाह या यूनेख से मुराद क्या है, यूनेख से मुराद जो है वो खसी आदमी है और इस खसी को ही जो है वो उर्दू में ख्वाजा सरा कहते हैं और इसी को उर्दू में, उर्दू की लुगात के अंदर, उर्दू डिक्शनरीज के अंदर इसी को ही जो है वो आप कहते हैं हिजड़ा। ठीक है, यानी उर्दू डिक्शनरीज में इसी को हिजड़ा कहा गया। ठीक है, तो यूनेख की जहां तक बात है तो ये पैदाइशी तौर पे मर्द होता है, तो अब उसका उज़्वे तनासुल जो है वो किसी वजह से एक्सीडेंटली रिमूव कर दिया गया या इंतकामम दुश्मनों ने या किसी ने उसको रिमूव कर दिया, तो अब उसकी उसका मतलब ये तो नहीं कि ये फीमेल हो गया, तो अब आप इसको फीमेल जो है वो नादरा के रिकॉर्ड में लिख लें, ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो यूनह जो है या यूनह जो है वो मर्द ही है, वो मेल ही है, उसको मेल की तरह ट्रीट करें, उसको आप यहां इसमें ना लेके आए। वो ख्वाजा सरा कहां से हो गया, मतलब उसके साथ तो एक हादसा हुआ है, वो तो मेल है, वो ख्वाजा सरा कहां से हो गया। इस तरह से तो आप ख्वाजा सराओं के हुकूक मारेंगे अगर आप इन लोगों को भी जो है वो ख्वाजा सराओं में शुमार करेंगे। ठीक है, तो ये मेल्स हैं, इनको मेल की तरह जो है वो ट्रीट करना चाहिए। तो एक तो यह है कि यूनेह जो है इसका यहां पे इस एक्ट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो मेल है, उसको फीमेल लिखने की कोई तुक नहीं बनती कानून के अंदर। ठीक है, तीसरी चीज जो इन्होंने यहां पे बयान की और वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, वो है ट्रांसजेंडर मैन। भाई ऊपर नाम भी ट्रांसजेंडर एक्ट है, फिर ट्रांसजेंडर में आगे उसकी तीन तारीफें कर दी और तीसरी तारीफ में कहा कि ट्रांसजेंडर, असल में ट्रांसजेंडर यही है जो तीसरी जगह जाके उसको लिख रहे हैं, थर्ड कैटेगरी, ये असल में ट्रांसजेंडर है। आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी उठा के देख लें, आप कैम्ब्रिज की डिक्शनरी उठा के देख लें कि अंग्रेजों ने ट्रांसजेंडर की क्या तारीफ की है और आप क्या कर रहे हैं। तो इंटरसेक्स तो ट्रांसजेंडर नहीं है, आप कोई भी अच्छी डिक्शनरी अंग्रेजी को उठा के देख लें तो इंटरसेक्स को कोई ट्रांसजेंडर नहीं कहता, यूनेक को कोई ट्रांसजेंडर नहीं कहता। ट्रांसजेंडर क्या है, ये जो तीसरी कैटेगरी आपने बनाई है ये ट्रांसजेंडर है। तो ये क्या, ट्रांसजेंडर मैन और ट्रांसजेंडर वीमेन कौन है, इसको इन्होंने कहा जी ये ख्वाजा सिरा। हालांकि ये ख्वाजा सिरा, पहली बात तो यह है कि ये लफ्ज़ी गलत लिखा हुआ, ख्वाजा सिरा नहीं होता, ख्वाजा सरा होता है, और ये ख्वाजा लिखा हुआ है, ख्वाजा नहीं है, ख्वाजा है। ठीक है, तो ये बहरहाल स्पेलिंग भी इसकी गलत लिखी है, उर्दू में इसकी प्रोनंसिएशन इस तरह से नहीं है, इसका तलफ़ इस तरह से नहीं है, खैर बहरहाल। तो ये कह रहे हैं ये ख्वाजा सिरा है भी नहीं, ट्रांसजेंडर को उर्दू में जनखा कहते हैं, जनखा, उर्दू में इसके लिए प्रॉपर वर्ड जनखा है। ठीक है, तो इंटरसेक्स जो है, इंटरसेक्स जिसको आपने खुसरा कहा है, ठीक है, उसको हमारे यहां आम बोलचाल में इंटरसेक्स को, जो मिडल सेक्स होती है उसको लोग ख्वाजा सरा भी कह देते हैं आम बोलचाल में। हालांकि ख्वाजा सरा जो है वो बेसिकली खसी होता था लुगत के मुताबिक, और हिजड़ा भी वही उसी को कहते थे, लेकिन हमारे यहाँ आम बोल चाल में जो है वो मिडिल सेक्स को, इंटरसेक्स को भी ख्वाजा सरा और खुसरा कह देते हैं। ये चल पड़ा है बाहर, उसको एक्सेप्ट करने में कोई हर्ज नहीं है कि जो चीज़ रवाज पा जाए तो वो एक्सेप्ट की जा सकती है, लेकिन ट्रांसजेंडर के लिए अलहदा से वर्ड मौजूद है, ट्रांसजेंडर के लिए उर्दू में अलहदा से लफ्ज़ मौजूद है, और वो लफ्ज़ है जनखा या जनाना। ठीक है, तो ट्रांसजेंडर क्या है, एनी पर्सन हुज जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर एक्सप्रेशन डिफर्स फ्रॉम द सोशल नॉर्म्स एंड कल्चरल एक्सपेक्टेशन बेस्ड ऑन द सेक्स दे वर असाइंड एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ, यानी उनकी पैदाइश के वक्त जो उन्हें सेक्स असाइन की गई थी उससे वो अपनी जेंडर आइडेंटिटी या जेंडर एक्सप्रेशन जो है वो मुख्तलिफ महसूस करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि हॉस्पिटल में आपके यहाँ बच्चा पैदा होता है तो हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, अब जारी बात है वो नर्सेज होती हैं वहाँ पे, जो है मतलब लेबर रूम के अंदर जो है वो गायनाकोलॉजिस्ट भी मौजूद होती हैं, तो हॉस्पिटल आपके बच्चे के हवाले से, बेबी के हवाले से एक सर्टिफिकेट देता है जिसे हम बर्थ सर्टिफिकेट कहते हैं, और उसमें आपके बेबी की जेंडर लिखी होती है, ये मेल है या फीमेल है, तो उसका एग्जामिनेशन तो की है, मतलब फिजिकली उसके अंदर अगर मेल वाले सेक्सुअल ऑर्गन होंगे तो तभी वो उसको मेल लिखेंगे ना, और अगर फीमेल वाले सेक्सुअल ऑर्गन होंगे तो तभी उसको फीमेल लिखेंगे, अगर कोई जेंडर ना हो तो वो उसकी जगह एक्स लिख देंगे, एक्स जेंडर है। ठीक है, तो अब हॉस्पिटल ने जब बच्चा आया था, जाहिर बात है दुनिया में आया था तो कपड़े पहन के तो नहीं आया था ना, बेलिबास होकर आया था ना, तो उसका एग्जामिनेशन किया, उसकी माँ ने उसको देखा, नर्सेज ने उसको देखा, दाई ने उसको देखा, गायनेकोलॉजिस्ट ने उसको देखा। ठीक है, तो अब उसके पूरे खानदान ने उसको देखा, अब उसके बाद जो है वो फिर हॉस्पिटल वालों ने एक बर्थ सर्टिफिकेट दे दिया कि ये मेल है या फीमेल है। अब एक बंदा जब बड़ा हो जाता है तो वो कहता है कि जी मुझे तो जो सेक्स असाइन की गई थी ना हॉस्पिटल से मेरे बर्थ सर्टिफिकेट पे डॉक्टर्स की तरफ से, तो मैं वो फील नहीं करता, मुझे लिखा हुआ है कि मैं मेल हूं और मेरी फिजिक्स भी उसकी मेल वाली है, बिल्कुल वो मेल है, भले वो चार बच्चे पैदा कर चुका हो, ऐसे भी केसेस हैं कि वो अपनी बीवी से चार बच्चे पैदा कर चुका है, ठीक है, उसकी शादी हो चुकी है, और वो बाप जो अपनी बीवी से चार बच्चे पैदा कर चुका है वो कह रहा है कि जी मेरे अंदर जो है वो फीमेल की रूह है, औरतों वाली रूह है, मैं अंदर से अपने आप को फीमेल औरत महसूस करता हूं, तो इसको ट्रांसजेंडर कहते हैं। ट्रांसजेंडर उसको कहते हैं कि वो मर्द, भरपूर मर्द, ठीक है, यानी उसका मेडिकल चेकअप करवाएं या मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में, ठीक है, बायोलॉजिकली वो मर्द है, उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स पूरे हैं, मर्दों वाले हैं, ठीक है, उसके अज़ाए तनासुब, और वो कहता है कि जी मैं अंदर से अपने आप को जो है वो औरत फील कर रहा हूं, और कोई औरत है जिसने बच्चे पैदा कर दिए जिसको मेंसेस आ रहा है, ठीक है, वो ये कह रही है कि जी मैं अंदर से महसूस करती हूं कि मैं मर्द हूं। तो अब हॉस्पिटल ने बर्थ सर्टिफिकेट दे दिया, पेरेंट्स को पता है कि उसकी जेंडर क्या है, लेकिन उसको फीलिंग हो रही है, उससे अपोजिट फीलिंग हो रही है, इसको वो ट्रांसजेंडर कह रहे हैं। तो बेसिकली इन लोगों को नवाजने के लिए ये एक्ट बनाया गया है, ये बात जो है वो मजहबी तबके में हो रही है। तो अगर आप जो है इंटरसेक्स यानी असल हिजड़ों के लिए, ख्वाजा सराओं के लिए अगर ये एक्ट बना रहे थे, तो कम से कम उस एक्ट के अंदर इंटरसेक्स प्रोटेक्शन जो है उनके जो राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट उसका नाम होता है ना, इंटरसेक्स पर्सन एक्ट उसका नाम होता है ना, आपने उसका नाम ही ट्रांसजेंडर एक्ट रखा है, तो इसका मतलब यह है कि आप किसी को खुश करना चाह रहे थे, कहीं से आपने फंडिंग ली है। अरबी में इसके लिए लफ्ज है मुखन्नस या मुतरज्जिल। मुखन्नस वो मर्द है जो औरतों वाली हरकतें करता है, और मुतरज्जिल वो औरत है जो मर्दों वाली हैयत, मर्दों वाली तौर तरीके, मर्दों वाली ड्रेसिंग हेयर स्टाइल जो है वो इख्तियार करने की कोशिश करती है। इस पर हम अलहदा से हदीस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो बहरहाल ट्रांसजेंडर से मुराद इन्होंने ये तीन कैटेगरीज ली हैं। तो हमने कहा कि बेसिकली तो इंटरसेक्स के हकूक की बात होनी चाहिए थी, जो जिनको इन्होंने खुसरा कहा है, या जो मिडल सेक्स हैं, या जिनको हमारे यहाँ सोसाइटी में ख्वाजा सराय या हिजड़ा भी कह दिया जाता है। जहाँ तक ये जनखे हैं, जनखे ट्रांसजेंडर जो भरपूर मर्द हैं या भरपूर औरत हैं, तो इनके हकूक के हवाले से ये बिल लेके आना, ये बहुत बड़ी जो है वो आप कह लें कि जी एक फाश गलती है जो हमारे यहाँ होमोसेक्सुअलिटी के रस्ते हमवार करेगी। किस तरह से ये हम आगे चल के आपको बताते हैं। रिकग्निशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, ठीक है, क्या कह रहे हैं जी, अ ट्रांसजेंडर पर्सन शेल हैव अ राइट टू बी रिकग्नाइज एज पर हिज और हर सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी एज सच इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। यानी सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी, एक ट्रांसजेंडर जो है, जनखा जो है, एक मर्द जाके कहता है कि जी मैं औरत हूं, मैं अंदर से अपने आप को औरत फील करता हूं, तो आप उसको औरत जो है वो कानून के अंदर कंसिडर करेंगे। एक औरत कहती है कि मैं अपने आप को जो है वो फील करती हूं कि मैं मर्द हूं, ठीक है, तो आप उसको मर्द कानूनन जो है वो कंसिडर करें। सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी, वो खुद अपने आप को क्या समझ रहा है। अभी समझने का तो मतलब क्या है कि फिरौन तो अपने आप को खुदा समझता था, सेल्फ परसीव्ड क्या होता है, फिरौन अपने आप को खुदा समझता था, ठीक है, तो हम उसको खुदा मानना शुरू कर दें, तो अब एक मर्द जो है वो अपने आप को औरत समझना शुरू कर दे, ठीक है, ये ऐसी है जैसे शाहरुख खान अब वो कहे कि जी मैं तो औरत हूं, ठीक है, तो आप उसको जो है वो इस बुनियाद पे कि वो अपने आप को औरत कह रहा है या समझ रहा है, तो हमें उसको औरत मान लेना चाहिए। तो इस तरह से तो कोई बंदा उठ के कहता है कि जी मैं अपने आप को समझ रहा हूं कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हूं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हूं, तो उसको आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मान लेंगे, ठीक है। कोई बंदा उठ के जो है वो दावा करता है, उठ के क्या दावा करता है, यहां सोशल मीडिया पे हर रोज आए रोज आप देखते हैं, कोई कह रहा है कि जी मैं मेहदी हूं, कोई कह रहा है कि मैं ईसा हूं, कोई कह रहा है कि मैं नबी हूं, मतलब लोगों की जो सेल्फ परसीव आइडेंटिटी होती है वो एक तो है नहीं, फिर कहां कहां आप उनको मानेंगे, आप सिर्फ जेंडर में उनको मानेंगे क्यों, मतलब इसकी क्या दलील है कि जो वो महसूस कर रहा है वो ठीक महसूस कर रहा है, इसकी क्या दलील है, क्योंकि लोग तो अपने आप को खुदा भी महसूस कर रहे हैं, लोग अपने आप को नबी भी महसूस कर रहे हैं, लोग अपने आप को मेहदी भी महसूस कर रहे हैं, लोग अपने आप को ईसा भी महसूस कर रहे हैं, जब दिमाग खराब हो जाए तो इंसान कुछ भी महसूस कर सकता है, अपने आप को कुत्ता बिल्ला भी महसूस कर सकता है, जैसा कि जो है वो हम आगे चल के आपको दिखाएंगे। अब ये मामला जो है वो जेंडर डिस्फोरिया का नहीं रह गया, अब जेंडर डिस्फोरिया से ये स्पीशीज डिस्फोरिया तक पहुंच गया। खैर बहरहाल उस पर हम आगे चल के गुफ्तगू करते हैं। तो ये क्या कहते हैं जी आगे चल के, अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड एज ट्रांसजेंडर अंडर सब सेक्शन शैल हैव अ राइट टू गेट हिमसेल्फ और हर सेल्फ रजिस्टर्ड एज पर सेल्फ परसीव जेंडर, सेल्फ परसीव जेंडर के एतबार से रजिस्टर होने का उसको राइट हासिल है, ठीक है, विद ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड नादरा। नादरा में जो उसको महसूस हो रहा है ना कि मैं ये हूं, ये नहीं कि जो वो है, ये नहीं, जो उसको महसूस हो रहा है उसके मुताबिक वो नादरा में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तमाम डिपार्टमेंट्स में उसके मुताबिक अपनी जेंडर लिखवा सकता है, ठीक है। इसके आगे चलें, एवरी ट्रांसजेंडर पर्सन बीइंग द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 18 इयर्स शैल हैव द राइट टू गेट हिमसेल्फ और हर सेल्फ रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी। ये बार बार लफ्ज आ रहा है, सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी विद नादरा ऑन द CNIC, CRC, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आपके ID कार्ड के ऊपर, ठीक है, हर जगह आप सेल्फ परसीव आइडेंटिटी, जो आप अपने आप को समझते हैं उसके मुताबिक आप अपनी सेक्स लिखवा सकते हैं। ये एक्ट कह रहा है, वो जो कह रहे हैं ना कि क्या लिखा हुआ है, ये सारे झूठ बोल रहे हैं। सही बात है, चैनल्स के ऊपर बैठ के जो है वो बड़ी बेशर्मी के साथ झूठ बोल रहे हैं कि ये नहीं लिखा हुआ, वो नहीं लिखा हुआ, मजहबी तबके झूठ बोल रहे हैं और इस तरह से बात को ट्विस्ट कर रहे हैं। और इसमें लिबरल मीडिया लगा हुआ है, आप उसको जियो को देखेंगे, मैं आपको उनके सफहात भी दिखा दूंगा। उसके अलावा एक डॉक्टर मोइज है, ठीक है, वो एक जो है वो खबीस रूह है, वो जिस तरह से चीज़ों को ट्विस्ट करता है और झूठ बोलता है, और उसके झूठ भी मैं आपके सामने लेके आऊँगा किस तरह से चीज़ों को वो ट्विस्ट कर रहा है। तो ये सारे झूठ बोल रहे हैं, ये बेसिकली आप खुद एक्ट पढ़ लें, इसको देख लें, अब उसके बाद क्या बात रह जाती है। फिर देखें, अ ट्रांसजेंडर पर्सन टू होम CNIC हैज ऑलरेडी बीन इशूड बाय नादरा शैल बी अलाउड टू चेंज द नेम एंड जेंडर, यानी जिसको CNIC भी जो है वो इशू हो गया है और उसमें लिखा हुआ है कि वो मेल है, सही बात है, मेल था तो मेल लिखा हुआ है या फीमेल है, अब वो चेंज करवाना चाहता है अपनी जेंडर, तो इसका भी उसको राइट है। शैल बी अलाउड टू चेंज द नेम एंड जेंडर, नेम भी और जेंडर भी, सही बात है, जेंडर चेंज करेगा तो नेम भी तो चेंज करना पड़ेगा ना, लड़कों वाले नाम के साथ तो लड़की नहीं ना बनेगा, तो अपना नाम, जैसे डॉक्टर मुइज ने अपना नाम मीरब लिख लिया, ठीक है। तो ये नादरा से इनको बिल्कुल फैसिलिटेट किया गया, ये झूठ बोल रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि जी नादरा इस हवाले से कोई फैसिलिटेट नहीं कर रहा, पता नहीं कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा और वहां से आपको ये सारा तो आपके एक्ट में लिखा हुआ है। टू हिज आर हर सेल्फ परसीव आइडेंटिटी ऑन द CNIC, CRC, ड्राइविंग लाइसेंस एंड पासपोर्ट फला 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 बला बला, ठीक है। तो ये सूरत हाल है, अब ये कह रहे हैं कि जी अच्छा नादरा की जो सूरत हाल है हम अभी आपको दिखाते हैं कि नादरा में ये एक इमेज जो है ना, ये आपको सोशल मीडिया से भी मिल जाएगा और जियो की जो है वो TV की जो वेबसाइट है वहां पर भी पड़ा हुआ आपको जो है वो मिल जाएगा। ये सेनेट में सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। तो उन्होंने इंटीरियर जो उस वक्त के मिनिस्टर थे शेख रशीद साहब से उन्होंने सवाल किया था तो कि 2018 से लेकर 2021 तीन सालों में कितने लोगों ने अपनी जो है वो जेंडर चेंज करवाई है, ठीक है। तो इसमें शेख रशीद साहब ने एक बात सिर्फ कही है कि नादरा जो है ना वो जेंडर चेंज करने का सर्टिफिकेट नहीं देता, लेकिन चेंज कर देता है, आईडी कार्ड में चेंज कर देता है, सर्टिफिकेट नहीं देता। इन्होंने सारा शोर मचाया हुआ कि जी नादरा सर्टिफिकेट नहीं देता, ये देखो लिखा हुआ है नादरा सर्टिफिकेट, ओ भाई नादरा ने सर्टिफिकेट नहीं दिया लेकिन आपकी जेंडर तो चेंज कर दी ना आपके जो है वो आईडी कार्ड के अंदर, और इसी तरह आपके पासपोर्ट में भी चेंज हो गई, आपके जो है वो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला सिर्फ, तो सर्टिफिकेट को आपने क्या करना है। तो ये अब आप देखें, ये कह रहे हैं कि जी मेल टू फीमेल 16,530 लोग जो है वो मेल से फीमेल उन्होंने जेंडर चेंज करवाई है और फीमेल से मेल 12,154 ने करवाई है, मेल टू ट्रांसजेंडर 9 ने करवाई है, फीमेल टू ट्रांसजेंडर 0 है, ट्रांसजेंडर टू मेल 21 है, ट्रांसजेंडर टू फीमेल 9 है, टोटल जो है वो 28,723। तो असल में मुस्तफीद कौन हो रहे हैं, ये मेल और फीमेल्स, ठीक है। वो मेल जो फीमेल बन रहे हैं वो 16,530 हैं, वो लड़कियां जो लड़के बन रहे हैं वो 12,154 हैं, तो यहाँ क्या कह रहे हैं जी, हाउएवर जेंडर इज मॉडिफाइड ड्यू टू मेडिकल रीजंस आर ऑन रिक्वेस्ट ऑफ ए ट्रांसजेंडर पर्सन, मेल फीमेल टू ट्रांसजेंडर, ठीक है, मेडिकल रीजन की वजह से या उसकी जो रिक्वेस्ट है, वही जो एक्ट ने कहा है कि जी वो अपने आप को फील कर रहा है, ठीक है, तो वो नादरा में जाके चेंज करवा ले। तो नादरा ने जो है वो 28,000 रिक्वेस्ट जो है वो रिसीव की है पिछले 3 सालों में, और उसमें 16,530 लड़के उन्होंने अपनी जेंडर जो है वो लड़की लिखवाई है, और 12,154 लड़कियों ने अपनी जेंडर लड़का लिखवाई है। बाकी तो वो जो असल हैं वो तो बहुत कम है, वो तो गिने चुने हैं, ठीक है, वो तो 40 के करीब जाके बनते हैं मुश्किल से, 39, ठीक है। तो ये सूरत हाल जो है वो हमारे यहाँ चल रही है इस वक्त। देखें ये आपको 24 न्यूज, ठीक है, HDTV जो है, आप इसकी वेबसाइट पे जाएं, 11 नवंबर 2021 की ये न्यूज है, ये आपको यहां से मिल जाएगी। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने जो है जो बात कही है वही फिगर 28,723, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द रिटन रिप्लाई ऑफ द मिनिस्ट्री, 16,523 जो मेन हैं इन द कंट्री हैव चेंज देयर जेंडर एंड टर्न इनटू वीमेन। 16,523 लड़कों से मर्दों से औरतें बन गए। ऑन द अदर हैंड 12,154 जो है वीमेन बिकेम मेन आफ्टर जेंडर रीअसाइनमेंट, ठीक है, 12,154 औरतें जो है वो मर्द बन गई हैं, ठीक है। तो ये सूरत हाल है, ये सूरत हाल है, ये रिटर्न जो है वो रिप्लाई गया है, ठीक है, नादरा की तरफ से ये सूरत हाल है, ये हो रहा है। तो अभी ये कह रहे हैं कि जी हमारे यहां कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो फिर अब आप देखें कि इसके मसाइल कहां कहां निकलेंगे। बेसिकली तो हमने कहा कि ये उनको वो जो एक आजादी का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि मगरब में है ना कि जी आपकी जिंदगी का अल्टीमेट गोल क्या है, मकसद क्या है, खुश होना। तो अगर आपको खुशी महसूस नहीं हो रही और आप लड़के हैं और आपको ये लगता है कि लड़की बन के आप खुश हो जाएंगे, तो आप अपनी जेंडर चेंज करवा लें, ठीक है। तो वो जेंडर भी उनकी एकदम से चेंज नहीं होती, वो क्या करते हैं, वो पहले थेरापिस्ट के पास जाते हैं, थेरापीज वगैरह करवाते हैं, ठीक है, वो उनकी काउंसलिंग करता है कि भाई आप लड़का हो, आप लड़की बनना चाहते हो, तो आप ऐसा करो कि आप लड़कियों वाला लिबास पहनना शुरू कर दो। वो कहेगा कि मैं लड़कियों वाला लिबास पहन के बाहर निकलूंगा तो मुझे जो है वो बुलिंग होगी, मुझे आवाज़ें कसी जाएंगी, तो वो उसकी जो है वो काउंसलिंग करेगा, कोई बात नहीं, ये तुम्हारा राइट है, ये वो ये सब तुमने बर्दाश्त करना है, ये सब नॉर्मल है, उसको नॉर्मलाइज करेगा। फिर उसके बाद वो हार्मोन्स लेगा, लड़का है तो लड़कियों वाले हार्मोन्स पिएगा, लड़की है तो लड़कों वाले हार्मोन्स पिएगी। फिर उसके बाद वो फिर कुछ अरसे के बाद सर्जरी की तरफ जाएगा, ठीक है, तो उसको सर्जन जो है वो ऑपरेट करेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर जो अगर मेल है तो फीमेल ऑर्गन्स और फीमेल है तो मेल ऑर्गन्स की तरफ वो उसकी जो है वो जेंडर उसकी रीअसाइनमेंट होगी। और इसमें उसको बाज़ुकात 5 साल तक का भी अरसा लग जाता है, तो बाज़ुकात इससे कम टाइम भी लगता है। तो ये टोटल एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है, और उसके पीछे जो उनकी कैपिटलिज्म की जो मार्केट है, देखिए हम कैपिटलिज्म की जो ग्लोबल छतरी है उसके नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और कैपिटलिस्ट तबका जो है वो हर जगह छाया हुआ है। अमेरिका में भी वही लोग हैं जो कि वहाँ पे जो उनके सदारती इंतखाब होते हैं उसमें पैसा लगाते हैं, ठीक है, ये बड़े बड़े बिलियनर्स, ठीक है, और फिर वो वहाँ पैसा देते हैं। जाहिर बात है इंतखाब लड़ने वालों के पास तो पैसा इतना होता है नहीं है कि वो अपनी इंतखाबी मुहिम जो है वो उसके जरिए से चलाएं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी यही हो रहा है, पीछे से इन्वेस्टमेंट कोई और लोग करते हैं, आगे से इंतखाबात कुछ और लोग लड़ते हैं, तो अब जो इन्वेस्टमेंट करते हैं फिर वो अपनी मर्जी के कवानीन बनाते हैं, तो अब वो कैपिटलिस्ट तबका अपनी मर्जी के कवानीन बनाते हैं। तो अमेरिका में मैं स्टैटिस्टिक देख रहा था, $1.9 बिलियन सिर्फ 2021 में, गूगल कर लें अभी जाके, $1.9 बिलियन की ये जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरीज हुई हैं, $1.9 बिलियन खरबों रुपए बनते हैं, खरबों रुपए की ये एक साल की मार्केट है कि मर्द औरत बन रहा है, औरत मर्द बन रही है, तो उनको तो $1 बिलियन आ रहे हैं वो कैपिटलिस्ट तबका, तो वो क्यों नहीं चाहेगा कि ये हो। और रिवर्स केसेस भी हो रहे हैं कि लड़का से लड़की बना लेकिन डिप्रेशन में रहा, फिर मसाइल हल नहीं हुई, फिर लड़की से जो है वो दोबारा लड़का बन रहा है, उसके लिए सर्जरी करवा रहा है, ये सूरत हाल है हमारे यहाँ। खैर बहरहाल अब आप देखें कि इसके नताइज और असरात के हैं, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ सर्टन एक्ट्स, ये कहते हैं प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, नो पर्सन शैल डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अ ट्रांसजेंडर पर्सन ऑन एनी ऑफ फॉलोइंग ग्राउंड्स। ट्रांसजेंडर के खिलाफ आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, किन ग्राउंड्स पे, the denial or discontinuation of or unfair treatment in educational institutes and services thereof. यानी आप अपने आपका कोई educational institute है और उसमें आप transgender को जो है वो admission नहीं देते. मिसाल के तौर पे आपका लड़कियों का school है, आपका लड़कियों का school है और एक लड़का आ जाता है और कहता है जी मैंने यहाँ लड़कियों की क्लास में बैठना है. आप कहते हैं ये तो सिर्फ फीमेल्स की क्लास है, तो वो कहता है कि नहीं मैं भी फीमेल हूँ, कानूनन देख लो, ठीक है, मैं फीमेल हूँ क्योंकि मैं ट्रांसजेंडर हूँ. है वो लड़का, आपको नजर आ रहा है कि वो लड़का है, तो भाई नजर आता है ना लड़का या लड़की, एक नज़र में देख के आपको पता चल जाता है, ठीक है. अब वो डॉक्टर जो है मोइज, वो अजीब उसकी जो है ना आप कह लें कि जी फोश जुबान है, अब वो कहता है कि जी हमारी क्या शलवारें उतार के चेक करोगे, ओ भाई सामने नजर आ रहा है कि लड़का है या लड़की है, नजर नहीं आ रहा, नजर आ रहा है, ठीक है. तो अब वो कह रहा है कि जी मैंने आईडी कार्ड पे जो है वो अपने आप को फीमेल लिखवा लिया है, तो आप अगर मुझे अपने इंस्टीट्यूट में दाखिला नहीं दे रहे, लड़कियों की क्लास में नहीं बैठने दे रहे, तो मेरे साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो मैं तो कोर्ट में जा रहा हूं, ठीक है. इसी तरह से देखें, द अनफेयर ट्रीटमेंट इन आर इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट ट्रेड और ऑक्यूपेशन. एम्प्लॉयमेंट में मिसाल के तौर पर जो है वो औरतों की सीट है, कोई औरतों का कोटा है, जैसे पार्लियामेंट में औरतों का कोटा है, एक मर्द है, अब वो इलेक्शन नहीं जीत रहा मर्दों की सीट पे, तो वो क्या करता है कि जी नादरा में जाके कहता है कि जी मैं अपने आप को औरत औरत फील कर रहा हूं, तो औरत का आईडी कार्ड मेरा बना दें. औरत का आईडी कार्ड उसका बन गया, अब वो औरतों की सीट पे इलेक्शन लड़के और करे वैसे, पार्लियामेंट में जाए वैसे, और तभी इन लोगों को समझ में आएगी. इसके बगैर इन लोगों को समझ में नहीं आएगी जब तक ये हरकतें नहीं होंगी. और ये सब यहां से होना है और ये वेस्ट में हो रहा है. अभी मैं आपको जो है वो उनके यहाँ के जो न्यूज पेपर्स हैं उनकी कुछ खबरें आपके सामने रखूंगा. द डिनायल ऑफ आर टर्मिनेशन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट आर ऑक्यूपेशन, द डिनायल आर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ आर अनफेयर ट्रीटमेंट इन हेल्थ केयर सर्विसेज. हेल्थ केयर सर्विसेज में भी आप जो है वो उसको डिनाई नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते. मिसाल के तौर पर अब आप देखें कि कैसे कैसे हमारे यहाँ उजूबे हो रहे हैं. ये वाशिंगटन पोस्ट, हमारे यहाँ का कोई शाम का अखबार नहीं है, वाशिंगटन पोस्ट ने जो है वो एक साहब के बारे में बताया जिनका नाम जो है वो है लिया थॉमस. लिया थॉमस जो है वो ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहे थे, 500 गज की स्विमिंग की आप कह लें कि जी एक रेस थी. वो बेचारा 4 साल से उसमें मर्दों से जीत नहीं रहा था, तो 5वें साल उसे अचानक पता चला कि उसके अंदर तो फीमेल की रूह है, तो उसने अपने आप को ट्रांसजेंडर लिखवा लिया, यानी अब वो वेमेन बन गया. तो अब वो औरतों की जो आप कह लें कि जी रेस है उसमें वो शामिल हुआ और वो जीत गया, आराम से जीत गया, ठीक है. था वो मर्द लेकिन औरतों की रेस में जो है वो जाके लड़ा है, क्योंकि उसने कहा कि जी मैं तो ट्रांस हूं, ट्रांसजेंडर हूं. तो ये देखें, लिया थॉमस बिकम्स फर्स्ट ट्रांसजेंडर वेमेन टू विन एन NCAA स्विमिंग चैंपियनशिप, ठीक है. तो अब खैर लोगों ने इसको अच्छा नहीं समझा क्योंकि वो था तो मर्द, सबको नजर आ रहा है कि वो मर्द है, लेकिन उसको ओलंपिक्स वाले कैसे इनकार करते, डिनाई करते, तो जहरी बात है उससे मसाइल पैदा होने थे, डिस्क्रिमिनेशन होनी थी. तो वो भरपूर मर्द है और वो औरतों के स्विमिंग में जाके जो है वो मुकाबला करके क्या कर रहा है कि जी स्विमिंग जीत के जो है वो गोल्ड मेडल हासिल कर रहा है, ठीक है. तो अब यहाँ पे इन्होंने नीचे ये काफ़ी लंबा चौड़ा जो है वो आर्टिकल है, तो इसमें इन्होंने लिखा है कि बाहर जो है वो औरतों ने एहतजाज भी किया है इस बात के ऊपर कि ये वेमेन के खिलाफ जो है, यहाँ ये देखें, ये इन्होंने नीचे जाके लिखा है कि सेव वुमेन्स स्पोर्ट्स. भाई वुमेन्स की जो, औरतों की जो स्पोर्ट्स हैं उसको बचाओ. ये मर्द जो हैं, आपको अजीब बात बताऊं, वेस्ट के अंदर भी और यहां पाकिस्तान भी, अब जो फेमिनिस्ट तबका है जो औरतों के हकूक की जंग लड़ रहा है, उन्होंने ट्रांसजेंडर्स के खिलाफ तहरीक चला दी है. क्यों? वो ये कह रहे हैं कि जी हम औरतों को पहली हकूक नहीं मिल रहे, तो अब मर्द क्या करेंगे, अपने आप को औरत लिखवा के हमारे हकूक भी ले जाएंगे. अब ये सूरत हाल है और वही बात यहां पर हो रही है, यहां पर हो रही है. अच्छा, एक और इससे भी इंटरेस्टिंग केस कैनेडा में सामने आया, ठीक है. अभी तो आना शुरू हुई है ना, तो अभी कोर्ट्स को भी वो हजम नहीं हो रहा है, वहां पर भी कोर्ट्स को वो हजम नहीं हो रहा है, लेकिन अनकरीब हजम होना भी शुरू हो जाएंगे. कि एक ट्रांस वेमेन उसको कहते हैं कि मर्द है लेकिन वो अब कहता है कि जी मैं औरत हूं, ठीक है. तो ये एक ट्रांस वेमेन थी कनाडा के अंदर जो वहां पे ब्यूटी सैलून में गई है और ब्यूटी सैलून में उसने जाके कहा है कि जी मेरी बॉडी वैक्स करो, ठीक है. और अब ब्यूटी सैलून वालों ने कहा कि भाई आप तो मर्द हो, तो उसने कहा कि नहीं मैं तो औरत हूँ, ठीक है, ट्रांस वेमेन हूँ। तो उन्होंने कहा भाई आप तो मर्द हो, ठीक है, आपकी हम कैसे बॉडी वैक्स करें, और ख़ास तौर पे आप ये कह रही हो कि जी आपके जो टेस्टिकल्स हैं उनकी हम बॉडी वैक्स करें, तो ये तो औरतों को हम जो है वो ट्रीट करते हैं। तो वो कोर्ट में चलेगी और उनके खिलाफ सू कर दिया, ये देखें, ठीक है, ये यूके से जो है वो मेट्रो। ट्रांस वीमेन ट्राइड टू सू ब्यूटिशियंस फॉर रिफ्यूजिंग टू वैक्स हर टेस्टिकल्स, ठीक है। अब ये खातून जो है वो वहां गई है और 13 वैक्सिंग सैलून्स उनके अंदर जो है वो गई है और किसी एक ने भी, और उनको उसने क्या कहा कि मेरे जो प्यूबिक हेयर हैं वो आप क्या करें, वो आप रिमूव करें। तो औरतों के सैलून में ये हजरत गए हैं, ठीक है, और इन्होंने कहा कि जी मेरे जो मतलब जैसे हम कहते हैं कि जी जेरे नाफ के जो बाल हैं ना, ये उन्होंने कहा कि उन औरतों से कहा कि वो रिमूव करें। तो उन्होंने कहा आप तो मर्द हो, ये तो औरतों को हम देते हैं ये फैसिलिटी। तो उसने कहा कि नहीं मैं औरत हूं, और उसने कोर्ट में जाके जो है वो उनके खिलाफ सू कर दिया कि ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ट्रांसजेंडर के खिलाफ। ये तो सूरत हाल है, अगरचे कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया उसकी बात को, कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये एक्सेप्टेंस भी पैदा हो जाएगी। तो ये हम कह रहे हैं कि इसके नताइज क्या निकलने हैं, और ये जो मजहबी तबके की तरफ से ये बात आ रही है ये बिल्कुल ठीक आ रही है कि एक मर्द ने अपने आप को जो है वो लड़की लिखवा लिया है आईडी कार्ड में, तो अब वो लड़की जो है वो है तो मर्द, उसने अपने आप को लड़की लिखवा लिया है, तो अब वो किसी लड़के से शादी कर सकता है ना, तो ये सेम सेक्स मैरिज हो जाएगी। और एक लड़की ने अपने आप को लड़का जो है वो लिखवा लिया है, ठीक है, तो अब वो किसी लड़की से शादी कर सकती है, तो ये भी सेम सेक्स मैरिज हो जाएगी। तो लेस्बियन और गेज की जो आप कह लें कि जी वो यहां पे मैरिजेस होंगी, औरतें औरतों से शादियां करेंगी, मर्द मर्दों से जो है वो लीगलाइज हो जाएगा। इस तरह से होमोसेक्सुअलिटी को इस तरह से लीगलाइज कर दिया गया, ठीक है। अब आप देखें आगे चलते हैं हम एक्ट की तरफ, इस एक्ट में मजीद अब आगे चलें, देखें यहां पे जो बातें इन्होंने की हैं कुछ बातें अच्छी भी हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि जी राइट टू इनहेरिट, ठीक है, अच्छी बात है, विरासत का हक मिलना चाहिए, लेकिन किन को, इंटरसेक्स को, मिडिल सेक्स को, जिनको विरासत नहीं मिल रही, ये ट्रांसजेंडर को आप किस चीज का हक दे रहे हैं? ट्रांसजेंडर तो मेल है, मेल है तो उसको जो है वो लड़के का हक मिलेगा, ठीक है, और अगर वो फीमेल है तो उसको लड़की का हक मिलेगा, उसका तो पहले से ही हक मुतय्यन है, फिर आप क्या बात कर रहे हैं। हाँ, जो मिडिल सेक्स है, जो इंटरसेक्स है, ठीक है, जो खुसरा है, उसके अंदर आप देखिए अगर मेल डोमिनेंसी है तो उसको मेल वाला हिस्सा दे दें उसकी विरासत में, वालदैन की विरासत में, और अगर फीमेल वाली उसके अंदर डोमिनेंसी है, गालिब जो है वो अलामात हैं, तो उसको फीमेल वाला हिस्सा दे दें, ठीक है, या उसकी जब सर्जरी होती है तो जिस तरफ उसका जो है वो सर्जरी उसकी की जाती है तो उसको जो जेंडर असाइन होती है उसके मुताबिक उसका विरासत में हिस्सा मुकर्रर कर दें। और अगर बिल्कुल बहुत मुश्किल हो जाता है, नहीं तयन हो रहा किसी तौर पे भी, क्रोमोसोम, वैसे तो क्रोमोसोम्स वगैरह से, डीएनए वगैरह से, इन सब चीज़ों से जो है वो जो वदूद वगैरह होते हैं उनसे मतलब हो सकता है तयन बहुत हद तक, लेकिन आप कहें कोई ऐसा केस भी आ जाता है तो उसमें यह है कि आप एक एवरेज हिस्सा दे सकते हैं, वो बात ठीक है, लेकिन ट्रांसजेंडर, अब जैसे लड़की बहन है वो भाइयों के बराबर हिस्सा लेना चाहती है तो वो नादरा में जाएगी, अपने आप को मेल लिखवा देगी, भाई के बराबर हिस्सा ले लेगी। अब देखें क्या हो रहा है, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ट्रांसजेंडर पर्सन इन एक्वायरिंग द राइट फुल शेयर ऑफ प्रॉपर्टी एज प्रिस्क्राइब अंडर द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक हो गया। द शेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन शैल बी डिटरमाइंड As per the gender declared on CNIC in accordance with the law of inheritance in Pakistan, वो जो उसकी gender CNIC ID card के ऊपर है उसके मुताबिक उसको उसका हिस्सा मिलेगा, तो उसमें तो आपने उसको इख्तियार दे दिया कि CNIC पे जो अपनी gender मर्जी लिखवा ले, जो उसकी self perceived जो है वो identity है उसके मुताबिक वो gender लिखवा ले, तो उसके मुताबिक वो विरासत में हिस्सा पा ले, तो तमाम जो है वो बहनें क्या करेंगी, अपने भाइयों के बराबर हिस्सा लेने के लिए अपने आप को जो है वो मर्द लिखवा लेंगी। इसी तरह से आप पढ़ते चले जाएं, यहाँ मतलब इस किस्म की एम्बिग्विटीज़ हैं कि इंसान जो है ना वो इस पे हैरान रह जाता है। ये काफ़ी सारी चीज़ें, इसी तरह राइट टू एजुकेशन, इस पे भी हमने बात की है। तो ये कह रहे हैं जी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, हम तो कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए, आप अलहदा से स्कूल्स बनाएं, कॉलेजेस बनाएं, यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, जहां आप हिजड़ों को और ये इंटरसेक्स को, ख्वाजा सराओं को, ठीक है, खुसरों को, ठीक है, इनको आप तालीम दें, ठीक है, इनकी आप तरबियत करें, इनकी आप काउंसलिंग करें, ठीक, इनको आप जो है वो ऐसी तालीम दें कि ये बाइज्जत तौर पर ना सिर्फ ज़िंदगी गुजार सकें बल्कि कोई बिजनेस और कारोबार भी कर सकें, ये आप करें। लेकिन जो आप राइट देना चाहते हैं जनखों को, ठीक है, जनानों को, उन मर्दों को जो अपने आप को जो है वो फीमेल लिखवा रहे हैं, और उन जो है वो औरतों को जो अपने आप को मेल्स लिखवा रही हैं, ये तो आप मसाइल पैदा कर रहे हैं। इसी तरह राइट टू एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, मिलना चाहिए, राइट टू इनहेरिटेंस हो, राइट टू एम्प्लॉयमेंट हो, राइट टू एजुकेशन हो, ये सब राइट्स मिलने चाहिए, हम तो इन राइट्स के कायल हैं। राइट टू वोट, ये भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, ये राइट्स, राइट टू हेल्थ, ये भी होना चाहिए, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, राइट टू असेंबली, तो ये सारे राइट्स उनके होने चाहिए। लेकिन इंटरसेक्स के, इंटरसेक्स के, और इसका नाम इंटरसेक्स जो है वो पर्संस एक्ट होना चाहिए। ट्रांसजेंडर जो है वो तो पहली मेल है या फीमेल है, मेल और फीमेल को तो आपने पहले ही सारे राइट्स दे रखे हैं, उनके दोबारा राइट्स की आप क्यों बात कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही। जिसको राइट्स मिली हुई हैं, आपने दे रखे हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में हैं 73 के आइन के अंदर और उसके अलावा भी, तो उनके आप कौन से जो है वो राइट्स की मजीद बात कर रहे हैं। तो ये बात समझ से बिल्कुल बालातर है, बिल्कुल बालातर है। और फिर आप देखें कि ये सिर्फ जेंडर डिस्फोरिया, इसको कहते हैं जेंडर डिस्फोरिया। पहले तो इसको एक डिल्यूजन समझा जाता था कि एक लड़का जो है ना वो अपने आप को लड़की फील करता है, या लड़की अपने आप को लड़का फील करती है, फिर उसकी थेरेपी की जाती थी, काउंसलिंग की जाती थी, बाद में उसको उन्होंने कहा कि जी नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, अब बात जेंडर डिस्फोरिया तक नहीं रहेगी, अब स्पीशीज डिस्फोरिया तक। क्योंकि एक बंदा जब आप कह रहे हैं कि जी वो अपने आप को जो मर्जी समझे, सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी है, तो अगर उसकी सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी ये है कि ना मैं मर्द हूँ ना मैं औरत हूँ बल्कि मैं क्या हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, या उसकी सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी ये, वो कहता है मैं इंसान ही नहीं हूँ, तो अब स्पीशीज डिस्फोरिया जो है ये आ गया। स्पीशीज डिस्फोरिया क्या है, इसको अदरकिन भी कहते हैं। अदरकिन क्या है कि एक बंदा जो है वो अपने आप को क्या समझता है, वो ड्रैगन है, ठीक है, वो फेरी है, वो स्प्राइट्स है, वो वुल्व्स है, वो लूमड़ है, वो घोड़ा है, गधा है, वो एलियन है, मतलब जो मर्जी, वो कोई जिन भूत है, ठीक है। तो अब ये सूरत हाल हो रही है, और ऐसा नहीं है, इस पे भी जो है वो सर्जरी को अलाउ किया जा रहा है। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक हजरत साहब हैं, आप इसको यूट्यूब पे जाएं सर्च करें, इनका नाम है कैटमैन, कैटमैन ये, ठीक है, ये इनको लगता था कि ये टाइग्रेस हैं, ठीक है, तो इन्होंने सर्जरी करवाई बकायदा, और कैसी कभी शक्ल बना ली है। अब तो ये सर्जरी हो रही है कि एक साहब ये समझ रहे हैं कि मैं कुत्ता हूं, तो वो कुत्ते का मुंह बकायदा अपने इंसानी मुंह के ऊपर जो है वो सर्जरी करवा के लगा रहे। ये सूरत हाल हो चुकी है हजरत इंसान की, जैसे कुरान ने कहा ना ये जानवरों से भी बदतर हो जाएगा, और जैसे कुरान का वाला आम और अन्नम फला युगैरुन्ना खल्कल्ला, कि शैतान ने कहा था कि ए अल्लाह मैं इनको हुक्म दूंगा इन इंसानों को कि आदम को मैंने सजदा नहीं किया और उसकी वजह से आपने मुझे अपने दरबार से निकाल दिया, तो अब मैं आदम की औलाद को हुक्म करूंगा। ये जिस तखलीक के ऊपर आप इनको पैदा करेंगे ये इसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगे, ये आपकी तखलीक पे राजी नहीं होंगे, आप जो इन्हें जेंडर अता करेंगे इस पे राजी नहीं होंगे, आपने इन्हें इंसान पैदा किया अशरफुल मखलूकात, ये कुत्ता बिल्ला बनने को तैयार होंगे। और ये हो रहा है, ये हो रहा है बदकिस्मती के साथ। तो हम वही कह रहे हैं कि समझने को तो फिर बंदा कुछ भी बड़ी समझ सकता है, तो फिर क्या आप उसको अलाउ करेंगे, ये भी अलाउ करेंगे, इसके लिए भी आप कानून पास करेंगे, ठीक है, कि ये सब कुछ भी जो है वो होना चाहिए। ये बिल्कुल आप जो है वो गलत रुख के ऊपर चल पड़े। और फिर ट्रांसजेंडर देखें, बात ये है, ये ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी हमारे सामने, ठीक है, ट्रांसजेंडर की तारीफ क्या है, यूज टू डिस्क्राइब समवन हु फील्स दैट दे आर नॉट द सेम जेंडर एज द जेंडर दे वर सेट टू हैव व्हेन दे वर बोर्न, ठीक है, जब वो पैदा हुए थे तो वो नहीं है, ये ट्रांसजेंडर है। तो ट्रांसजेंडर को आप दरमियान में क्यों लेके आए, क्यों लेके आए? हाँ, अगर किसी के अंदर ऐसी फीलिंग्स हैं, देखें हो सकता है कोई लड़का जो है वो पैदा हुआ है और उसके अंदर लड़कियों वाली फीलिंग आ जाए, और वो एनवायरमेंट से भी आ सकता है, नो डाउट आ जाता है, बहुत कम है, एक तो रेयर केसेस हैं, लेकिन काउंसलिंग से, थेरापी से मसला हल किया जा सकता है। वो जो भरपूर मर्द है आप उसको फीमेल बनाने पे तुले हुए हैं और उसकी थेरापी करके, हार्मोन्स पिलवा के, सर्जरियां करके उसको फीमेल बना रहे हैं, और फिर फीमेल से वापस जो है वो मेल भी बना रहे हैं, और उस पर जो है वो बिलियन डॉलर्स भी कमा रहे हैं। ठीक है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री आपने लगा रखी है। तो एक बंदा पहली बायोलॉजिकली मर्द है, बस उसके अंदर एक सोच आ गई है कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, जैसे उसकी सारी बहनें थीं या कजन उसकी फीमेल्स थीं, उनके साथ वो खेलता रहा या गुड़ियों पटोलों से खेलता रहा, ठीक है, उस वजह से उसके अंदर फीमेल्स की जो है वो सेंस डेवलप हो गई। मुख्तलिफ फैक्टर्स हो सकते हैं, बाज़ औक़ात ये होता है किसी बच्चे को चाइल्ड अब्यूज किया जाता है, बचपन में अब्यूज किया जाता है बहुत ज्यादा, उस वजह से भी उसके अंदर ये सेंस डेवलप हो जाती है। हम इसके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर इंशाल्लाह अलहदा से गुफ्तगू करेंगे जब हम डॉक्टर मोइस साहब के ऊपर एक अलहदा से एक वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह से। तो अब ये सूरत हाल है कि अगर ऐसे मसाइल हैं किसी के साथ और ये रेयर केसेस हैं, तो उसकी काउंसलिंग थेरापी करके जो उसका हकीकत में वो है उसको वो रियलाइज करवाया जा सकता है। कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। ठीक, जैसे कोई अपने आप को कुत्ता बिल्ला समझना शुरू कर देता है, जैसे कोई बच्चा जो है वो सुपरमैन के कार्टून्स जो है वो देख के या बेन 10 के कार्टून देख के अपने आप को बेन 10 सुपरमैन समझना शुरू कर देता है, तो क्या करते हैं आप, उसकी काउंसलिंग करवाते हैं। मेरा एक स्टूडेंट था जर्मनी से, तो वो कार्टून्स में बहुत ज़्यादा एलियंस देखता था, तो अब उसको यही लगता था कि मतलब एलियंस आएंगे और उसको उठा के ले जाएंगे। उसने एक साल तक अपनी काउंसलिंग करवाई, उसका मामला ठीक हो गया। तो हो जाता है इस तरह, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा हो जाता है। और बहुत से बच्चे आपने देखे होंगे, आपने न्यूज़ भी पढ़ी होगी कि सुपरमैन अपने आप को समझा और छत से नीचे जो है वो सुपरमैन वाला लिबास पहन के छलांग लगा दी, समझा कि मैं भी उड़ पाऊंगा, लेकिन वो नहीं उड़ पाया। तो ये सूरत हाल तो है, बच्चे हमारे जो है वो गेम्स एडिक्ट होते हैं, गेम्स में जैसे देखते हैं तो वैसे करने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं। तो ये डिल्यूजंस हैं, इन डिल्यूजंस को आप काउंसलिंग के जरिए से खत्म करेंगे, ना कि आप उनको कहेंगे कि जी ये ठीक है, यही फैक्ट है। जो तुम्हारी सेल्फ परसीव आइडेंटिटी है, सेल्फ परसीव आइडेंटिटी तो गेम खेलने के बाद यही है कि 20 बंदे पड़का दे वो, ठीक है। तो सेल्फ परसीव आइडेंटिटी जो है वो एक साल तक गेम खेलेगा तो वो बिल्कुल और होगी, तो आप उसके मुताबिक उसको उसकी काउंसलिंग करेंगे कि वही है जो गेम खेल रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना। आप उसको समझाएंगे, उसकी गेम के ऊपर भी पाबंदी लगाएंगे, वो फैक्टर्स बंद करने की कोशिश करेंगे कि जिससे वो उसको वो जो है वो फूड मिल रही है, गजा मिल रही है, कि वो उस डिलीजन के अंदर बढ़ता चला जा रहा है। तो इलाज करना चाहिए, ठीक है, ऐसे लोगों का, ऐसे लोग हो सकते हैं, और उनका इलाज, बेहतरीन इलाज काउंसलिंग के जरिए से, थेरापीज़ के जरिए से किया जा सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। उनके लिए अलग से आप, ट्रांसजेंडर्स के लिए आप अलग से हॉस्पिटल्स बना सकते हैं। देखें, और जो लोग तकल्लुफ़ से ऐसा करते हैं, तकल्लुफ़ से ऐसा करते हैं, उनके ऊपर अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई। यानी वो मर्द जो औरतों जैसी हरकत इख्तियार करें, बिहेव करें, औरतों के जैसे बोलें, ड्रेसिंग करें, बॉय कट लिबास पहने, उनके ऊपर अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई। वो औरतें जो मर्दों की जैसी हरकतें करें, बिहेव करें, उन पर अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई। ठीक है, ये हदीस है। आप देखें हमारा दीन क्या कह रहा है, सही बुखारी की रवायत, और यही बात कुरान में भी है कि ये बेसिकली शैतान के पैरोकार हैं, फॉलोअर्स हैं, जो अल्लाह की तखलीक में जो जेंडर अल्लाह ने उन्हें दी है, भाई जो अल्लाह ने दी है तो वो हॉस्पिटल ने बताया ना, मौलवी साहब ने आपको वो जेंडर थोड़ी असाइन की है, मौलवी साहब ने तो नहीं की, मदरसे से तो आपने जो है ना, जामिया अशरफिया से तो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लिया ना, या किसी दारुल उलूम से तो नहीं लिया ना, आपको तो जनरल हॉस्पिटल वालों ने दिया, आपको तो जिन्ना हॉस्पिटल वालों ने दिया है, आपको तो डॉक्टर हॉस्पिटल वालों ने दिया है, तो आप उनके ऊपर इतमाद नहीं कर रहे, जिनका ये शोभा है वो आपको बता रहे हैं कि जी आपकी ये जेंडर है, आपकी ये सेक्स है, लेकिन आप उस पर जो है वो इतमाद नहीं कर रहे। चलें, बहरहाल ये सही बुखारी की रवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लम ने लानत फरमाई, अल मुखन्नसीन मिनर रिजाल, यानी मुखन्नस मर्दों पर, और वल मुतरज्जिलात मिनन निसा, और उन औरतों पर जो मर्दों वाली चाल ढाल इख्तियार करती हैं, यानी वो मर्द जो औरतों वाली चाल ढाल इख्तियार करते हैं, और वो औरतें जो मर्दों वाली चाल ढाल इख्तियार करती हैं। और आप सल्लम ने क्या कहा, अखरिजूहुम मिन बुयूतिकुम, इन्हें अपने घरों से निकाल दो, इन्हें निकाल दो। हिजड़ों को निकालने के बारे में नहीं कहा, खाजा सरा जो इंटरसेक्स है उसके बारे में नहीं कहा, उसके बारे में नहीं कहा, वो तो मजलूम तबका है, ठीक है, उसकी तो आप तरबियत करें, उसके लिए अलग से इंस्टीट्यूट्स बनाएं, उनके पेरेंट्स की जो है वो काउंसलिंग करें, उनकी काउंसलिंग करें। ये लोग जो है वो बेसिकली सोसाइटी के अंदर फहाशी फैलाते हैं, ठीक है, اور اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا. بہت سی روایتوں میں ہمیں آتا ہے کہ یہ ایسی ایسی باتیں کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئی اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی, تو آپ نے ازواج کو کہا کہ آئندہ یہ گھر گھر میں مت داخل ہونے دو. ایسی بیہودہ گفتگو یہ کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 5885, حضرت عبداللہ ابن عباس سے, کہ اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ان مردوں کے اوپر جو عورتوں سے مشابہت اختیار کریں اور ان عورتوں کے اوپر جو مردوں سے مشابہت اختیار کریں, کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پہ لعنت کی جو عورتوں کی چال ڈال اختیار کریں اور ان عورتوں پہ لعنت کی جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں. تو ان کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس وقت یہ فرمایا تھا نا کہ انہیں گھروں سے نکال دو, گھر میں نہ داخل ہونے دو. ٹھیک ہے, تو جو تکلف سے ایسا کرتے ہیں, اپنی کاؤنسلنگ کی طرف, اپنی تھراپی, اپنی علاج کی طرف بھی نہیں آتے, تو ان کو تو آپ سوسائٹی سے جو ہے نا وہ باہر نکال دو. سوسائٹی سے باہر نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے شہر بدر کر دیا جاتا تھا اس زمانے میں, یا آج کل ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ ڈیپورٹ تو آپ نہیں کر سکتے, وہ تو آپ کے سٹیزن ہیں, تو اس میں ایک یہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کو جیل میں ڈال دو. تو اب اس وقت ظاہری بات ہے کہ جی اس کے اوپر بھی بڑا وابیلا ہوگا کہ آپ جیل میں کیوں ڈال رہے ہیں, ان کا کیا قصور ہے. ٹھیک ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں کہ جن کے اندر پیدائشی طور پہ نقص ہے لیکن وہ اپنا علاج کروانے پہ تیار ہے, ویل اینڈ گڈ, ان کو تو آپ رکھیں جو ہے وہ کسی اپنے تربیتی ادارے میں. باقاعدہ ٹرانسجینڈر کے لیے آپ علیحدہ سے آپ ادارے قائم کریں جہاں ان کی کاؤنسلنگ ہو, ان کی تربیت ہو. ٹھیک ہے, اور وہ اس کو اس کے مطابق کہ جو ان کے اندر جو ہے وہ سیکشوئل آرگنس ہیں, میل والے ہیں تو میل کے مطابق ان کی کاؤنسلنگ اور تھراپی کریں, فیمیل والے ہیں تو فیمیل کے مطابق. یہ نہیں کہ ان کے اندر روح فلانی ہے ڈمکانی ہے. وہ روح تو لوگوں نے اپنے اندر خدا کی بھی مان لی, نبی کی بھی مان لی, اور یہ ڈاکٹر معیز جو ہے اس کے اوپر میں ایک علیحدہ سے پروگرام کروں گا. یہ تو مطلب ایسی ایسی باتیں, وہ ہندوانہ کانسیپٹ, ایوری تھنگ از گاڈ. ایک اس نے ٹاک شو کے اندر کہا کہ ہر چیز خدا ہے. یہ تو حضرت یہاں تک پہنچا ہوا ہے اور کہتا ہے میں خواجہ سراؤں کے جو ہے وہ چیمپئن ہوں ان کے رائٹس کا. یہ کہاں سے چیمپئن ہے؟ اس میں ہم آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں. تو یہ مطلب ان کے لیے پنشمنٹ ہے باقاعدہ ہمارے دین کے اندر. اگر کوئی اسلامی ریاست ہوگی تو ان کی پنشمنٹ ہے اگر یہ اس کی طرف نہیں آتے, کیونکہ یہ گندگی پھیلائیں گے سوسائٹی کے اندر. اور خود جو ہے ڈاکٹر معیز نے ایک ویڈیو میں یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ وہ سوسائٹی میں گندگی پھیلاتا ہے. اچھا, پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ ڈاکٹر معیز ہے کون. جو لوگ اس کو جانتے ہیں سو جانتے ہوں گے, یہ ایک عجیب روح ہے. ٹھیک ہے, یہ پہلے میل تھا. ٹھیک ہے, ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے غالباً. اس نے ایبٹ آباد سے جو ہے وہ اس نے ایبٹ آباد سے اس کا تعلق ہے, وہاں سے اس نے جو ہے وہ ایم بی بی ایس کیا ہے. تو پہلے یہ میل تھا, پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کو پتہ نہیں کیا ہوا, اس کو یہ لگا کہ میرے اندر فیمیل کی روح ہے تو یہ پھر فیمیل بن گیا. یہ اس کی پہلی کی پکچرز ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں, یہ ڈاکٹر معیز, اس کے داڑھی بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو کہیں سے فیمیل نظر آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے, دھیان سے بتائیں, یہ آپ کو فیمیل کہیں سے نظر آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کی ایک اور پکچر ہم آپ کو دکھاتے ہیں ڈاکٹر معیز کی. یہ دیکھیں, یہ آپ کو کہیں سے فیمیل جو ہے وہ نظر آ رہا ہے ڈاکٹر معیز؟ ٹھیک ہے, اب آپ کو ہم اس کی ایک لیٹسٹ پکچر دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں, تو ابھی یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ میل سے فیمیل کی طرف ان کا رجحان ہے, یعنی یہ بھرپور میل تھے لیکن پھر ان کو لگا کہ ان کے اندر فیمیل کی روح ہے تو انہوں نے وہ فیمیل کی طرف جو ہے وہ اب سفر شروع کر دیا ہوا. یہ دیکھیں, یہ ٹھیک ہے. تو یہ حضرت جو ہے نا ڈاکٹر معیز صاحب, یہ اس وقت سب سے بڑے سپوکس مین بنی ہوئی ہیں کہ جی میں خواجہ سراؤں کے حقوق کا سپوکس مین ہوں. حالانکہ یہ خواجہ سرا خود نہیں ہے, خواجہ سرا نہیں ہے یہ انٹرسیکس نہیں ہے. خواجہ سرا تو بیسیکلی انٹرسیکس ہے, یہ خسی ہے, یہ تو ٹرانسجینڈر ہے, یہ تو زنخہ ہے, یہ تو زنخہ ہے. ٹھیک ہے, یہ تو سرجری کروا کے جو ہے وہ فیمیل بنے جا رہا ہے, یہ تو پیدائشی طور پہ میل ہے. تو یہ اس وقت کہتا ہے جی میں خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے لڑا ہوں, یعنی مطلب مدعی جو ہے وہ سست اور گواہ چست. ٹھیک ہے, تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے. حالانکہ خواجہ سرا جو ہے وہ اس سے کیا کر رہے ہیں, اپنی لا تعلقی کا جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں. اور یہ صاحب جو ہے وہ اللہ کے رسول نے جو یہ بات کہی ہے نا کہ ان کو نکال دو, اس میں کتنی بڑی حکمت ہے یہ میں آپ کو بتانے والا تھا. کہ یہ ایک ویڈیو ہے ہمارے ایک دوست نے بنائی ہے یوتھ میٹرز کے ڈاکٹر جو ہے وہ معیز کے اوپر, اس کو آپ ضرور دیکھیے گا, چھوٹی سی ویڈیو ہے. اس میں سے چھوٹا سا کلپ میں آپ کو دکھاتا ہوں جس میں ڈاکٹر معیز جو ایکس میل ہے اور ابھی حالیہ جو ہے وہ فیمیل ہے, یہ اصل میں ٹرانسجینڈر ہے. زنخہ ہے, ٹھیک ہے, خواجہ سرا نہیں ہے, اس کو خواجہ سرا نہیں کہنا, بالکل نہیں کہنا. تم نے لڑنا ہے تو زنخوں کے جو ہے زنانوں کے حقوق کے لیے لڑو, تم خواجہ سرا ہو ہی نہیں, ٹھیک ہے. یہ ایسی ہی ہے کہ جیسے جو ہے نا مطلب تمہارے جس کمیونٹی سے تعلق ہی نہیں ہے اس کمیونٹی کے حقوق کی تم باتیں کرنا شروع ہو گئے ہو خام خواہ جو ہے وہ. یہ دیکھیں,
سیلف کلیمڈ, انہوں نے خود کلیم کیا دیٹ آئی یوز ٹو سپلائی پون ٹو مائی کزنز اینڈ فیملی ممبرز,
آئی واز دی پون سپلائر آف مائی کانٹینٹ, آئی ایم ایڈمیٹنگ دس آن کیمرا وچ از وائی ایوری بڈی لوز می, ہر طرح کی میرے پاس میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے فوٹوز بنا کے رکھے ہوتے
ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ایسے بندے کی ٹاک سنیں جو پورنوگرافی مٹیریل سپلائی کرتا ہو؟ پھر انہوں نے یہ کلیم کیا کہ دنیا جہاں کی میں نے ڈرگ لی ہے.
سو بیسیکلی دی فائنل از وین یور برین ریلی ٹرپس, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو سے دیٹ از آلسو دی موسٹ ٹروسٹ اسٹیٹ, بیکاز جن لوگوں نے سائیکڈیلکس کیے ہوئے ہیں, میں نے کیے ہوئے, میں نے دنیا کا ہر نشہ کیا بخیر,
میں نے بھی کیے.
آپ میں سے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ایسے لوگوں کو سنیں جو ڈرگس کو نارملائز کرنا چاہیں؟ پراپر ٹاک جس میں انہوں نے پورا آرگیومنٹ کیا کہ جو ڈرگس ہیں وہ نارملائز ہونی چاہیے, وہ لیجیٹمائز ہونی چاہیے. Thirdly, انہوں نے کہا کہ میں نے ڈیٹنگ ایپ سے دنیا جہاں کا سیکس کیا
ہے. I was one of the very few unique people like that, جو صرف دوستیاں کر رہے تھے ڈیٹنگ ایپس پہ, سیکس بھی کر رہی تھی میں, جھوٹ نہیں بولوں گی, بہت برا ہو رہا تھا, کرتے کرتے اچھا ہونا اسٹارٹ ہوا.
ہم سے کتنے پیرنٹس ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اس طرح کی ٹاک سنیں, ایک ایسے بندے کو سنیں جو ڈیٹنگ ایپ کے تھرو سیکس کو نارملائز کرنے کی کوشش کرے, یا یہ کہے کہ یار یہ تو نارمل سی بات ہے.
تو یہ اب آپ دیکھیں, ایک تو یہ پورن کو, پورنوگرافی کو جو ہے وہ عام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, سوسائٹی کے اندر وہی اریانی اور فحاشی پھیلا رہے ہیں, اور دوسرا جو ہے وہ سیکس کو نارملائز جو ہے وہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور دنیا جہاں کا نشہ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ڈرگ کو جو ہے وہ ڈرگس کو نارملائز کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حکمت کے تحت کہا, یہ بیسیکلی ٹرانسجینڈر ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حکمت کے تحت کہا کہ ان کو گھروں سے نکال دو, اپنے بچوں سے ان کو دور رکھو. تو ایک سکول والوں نے اجازت نہیں دی ان کو ٹیٹ ٹاک کی, تو انہوں نے اس کے اوپر شور مچا دیا کہ جیسے ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے, بھائی تمہیں کون جو ہے وہ اپنے سکول میں بلوائے گا کہ جس کے یہ نظریات ہوں, یہ خیالات ہوں, یہ ویوز ہوں, تو تم نے ہماری قوم کے بچوں کو خراب نہیں کرنا, تو کیا کرنا ہے؟ تو یہ صورتحال ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے جو ہے جو مذہبی طبقہ کہہ رہا ہے کہ بیرونی ایجنڈا ہے, تو اب آپ کو لگتا ہے کہ نہیں لگتا اس کے پیچھے؟ خیر بہرحال ان کی بہت سی ویڈیوز میں نے جو ہے وہ ابھی دیکھی ہیں, ڈاؤن لوڈ بھی کی ہیں, اور ان کی باتوں میں بہت کنٹرڈکشن, بہت تضادات ہیں, بالکل جیسے پیچھے سے نا کوئی ان کو سکھا رہا ہے. وہ انشاءاللہ سے وہ میں سارے کلپس جو ہے نا وہ آپ جمع کر کے کسی وقت اس کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو بناؤں گا. تو یہ صورتحال ہے. اب یہ صاحب اب آپ دیکھیں کہ کمپین لے کے چل رہے ہیں خواجہ سراؤں کے حقوق کی, ٹھیک ہے, تو اب آپ دیکھیں کہ جی کیا باتیں کر رہے ہیں, ان کی بھی ذرا باتیں آپ سنیں.
اس تمام پروپیگنڈا کے دوران ایک بات جو ہمیں نظر آئی, سیکس کا بہت ذکر ہوا, اور وہ تمام ذکر آپ کی طرف سے ہوا, آپ کے فالوورز کی طرف سے ہوا, ہماری طرف سے تو نہیں ہوا. نہ میری ٹیڈیکس کی سپیچ کے اندر کہیں سیکس مینشن تھا, نہ ہی ٹرانسجینڈر پرسنز ایکٹ 2018 کے اندر کہیں سیکس مینشن ہے. یہاں تک کہ ہمارے خلاف جو جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ خواجہ سرا ایل جی بی ٹی میرج کو لیگلائز کرنا چاہتے ہیں, ہمارے قانون کے اندر شادی بیاہ کی کوئی شک موجود ہی نہیں.
دیکھیں سب سے پہلے تو اس کو نا شٹ اپ کال ایک دینی چاہیے, اور وہ خواجہ سراؤں نے اس کو شٹ اپ کال بہت دفعہ دی ہے. ملتان میں جو ہے وہ مظاہرے ہوئے ہیں خواجہ سراؤں کے, سوشل میڈیا پہ آپ کو مل جائیں گے, وہ اس کو واضح طور پہ شٹ اپ کال دے رہے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو ہمارے حقوق کی بات کرنے والے, ہماری کمیونٹی ہے, مطلب ہم انٹر سیکس. اچھا یہ آگے سے کہتا ہے جی انٹر سیکس موجود ہی نہیں ہے, مطلب اس کا دعویٰ یہ ہے, مجھے کسی نے بتایا کہ یہ کہتا ہے کہ جی انٹر سیکس مجھے دکھاؤ, انٹر سیکس ہوتا کیا ہے؟ تو اگر تو اس کا یہ دعویٰ ہے, ابھی میں نے اس کے یہ الفاظ نہیں سنے, اگر تو اس کا دعویٰ ہے تو اس سے بڑا جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ جی کوئی اب میں کیا لفظ استعمال کروں, ایسے ہی کوئی سخت لفظ استعمال کر جاؤں گا, بہتر ہے میں استعمال نہیں کرتا, وہ چیز آپ کو دکھا دیتا ہوں جس سے اس کی جہالت دور ہو جائے, اگر اس کا یہ دعویٰ ہے. خیر بہرحال یہ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی ویب سائٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں جی 5 متھس ہیں, کس کے بارے میں؟ انٹر سیکس کے بارے میں. ایوری باڈی از آئیدر بورن میل اور فیمیل, پہلی متھ تو یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے یا تو میل پیدا ہوتا ہے یا فیمیل پیدا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. دوسری کیا ہے, بینگ انٹر سیکس از ویری ریئر, ٹھیک ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک متھ ہے کہ انٹر سیکس نہیں ہے یا بہت کم ہے, ایسا نہیں ہے. इंटरसेक्स जो है, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स अराउंड 1.7% ऑफ द पॉपुलेशन इज बोर्न विद इंटरसेक्स ट्रेट्स। ठीक है, तो 1.7% लोग दुनिया में इंटरसेक्स है, यानी 1 करोड़ के अंदर तकरीबन 1,70,000 बंदा इंटरसेक्स पैदा होता है। और पाकिस्तान की आबादी 20-22 करोड़ है, उसके हिसाब से आप देख लें कि कितने बन जाते हैं। ठीक है, तो एक आप कह लें कि जी मिलियंस के करीब बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा तीसरी मिथ ये क्या कह रहे हैं, तीसरी मिथ ये कह रहे हैं कि बीइंग इंटरसेक्स जो है वो इज ए कंडीशन दैट नीड्स टू बी करेक्टेड। ये कह रहे हैं कि जी एक बंदा इंटरसेक्स के तौर पे पैदा हुआ है तो उसको मेल या फीमेल ही होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि जी बाज़ औक़ात तो वो सर्जरी काम कर जाती है और बाज़ औक़ात जो है वो सर्जरी काम नहीं करती, उसके लिए मसाइल पैदा होते हैं। तो ज़रूरी उसकी सर्जरी हो और वो मेल या फीमेल ही बने, तो ये भी एक मिथ है, ये ज़रूर जो है ना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चौथा उन्होंने क्या कहा कि इंटरसेक्स पीपल आर ट्रांसजेंडर, ये भी मिथ है। बीइंग इंटरसेक्स हैज नथिंग टू डू विद बीइंग ट्रांसजेंडर, इस बात को समझने की कोशिश करें। इंटरसेक्स बिल्कुल डिफरेंट है, वेस्ट में इंटरसेक्स के जो हुकूक हैं राइट्स हैं उनके लिए अलहदा से जो है वो मूव चली हुई है, हमारे यहां दोनों को मिक्स कर दिया गया। तो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का डेटा है कि 1.7% जो है वो इंटरसेक्स है, तो बहुत बड़ा डेटा है। तो असल में उनके हुकूक की बात करें आप, ट्रांसजेंडर कहां से आ गए, ट्रांसजेंडर तो आप खुद पैदा कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, ये कहां से आ गए, ये तो आप खुद पैदा कर रहे हैं लोगों के अंदर, शोक उभार रहे हैं ऐसे कानून बना के कि वो अपने आप को फील करें। भाई आप फील क्या करना है, आप सारा दिन अपने आप को जो है वो फील करना शुरू कर दें कि मैं मुर्गी हूं मुर्गी हूं मुर्गी हूं, तो आप देखें सारा दिन मुर्गी की तस्बीह करें तो आप शाम को यही समझना शुरू कर दें कि मैं मुर्गी हूं, लोग अपने आप को कुत्ता बिल्ला समझना शुरू कर देते हैं, जानवर समझना शुरू कर देते हैं। ऐसा है, ये जो है ना गलतफहमी, ये डिलीजन जो है ना वो इंसान की लाइफ का एक हिस्सा है, इनसे इंसान को निकालने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि ऐसे एक्ट्स बना के जो है ना वो उसको उसके अंदर धकेलने की कोशिश करें उस दलदल के अंदर। खैर बार, तो एक तो हमने कहा कि ये हजरत जो है ना ये यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि हम ख्वाजा सराओं के हकूक के लिए लड़ रहे हैं और मजहबी तबके के जेहन पे सेक्स सवार है, हालांकि हमने इसकी वीडियोस आपको दिखाई हैं, इसके इंटरव्यूज अभी तो और बहुत सारे हैं कि जिसमें ये खुद कह रहे हैं कि मैं अपने रिश्तेदारों में मैंने बहुत पोर्न्स बांटी हैं और मैंने हर किस्म का सेक्स किया है और मैंने हर किस्म का नशा भी किया। अब आप देखें कि हमारे सामने ये बेसिकली जो हिजड़े हैं या जिन्हें हम इंटरसेक्स कह रहे हैं, पाकिस्तान में उनकी एक एसोसिएशन है, उसका जो सदर है अलमास बोबी, उसके ज़रा जो है वो आप ख्यालात सुने इस एक्ट के बारे में, ट्रांसजेंडर एक्ट के बारे में, कि वो क्या कह रहे हैं।
तारिक महमूद पोठोहार टाइम्स से, मेरे साथ हैं अलमास बोबी। अलमास बोबी, ये जो बिल जो है वो अभी पास हुआ है ट्रांसजेंडर का, आपके ख्याल में ख्वाजा सरा जो है वो इस बिल से कितने मुस्तफीद हो सकते हैं?
ख्वाजा सरा नहीं, ख्वाजा सरा पहले के मुस्तफीद हुए हुए हैं, ख्वाजा सराओं के अपने घर हैं, ख्वाजा सराओं के अपने कारोबार हैं, ख्वाजा सरा नमाज पढ़ते हैं, हज करते हैं, उम्रे करते हैं, ख्वाजा सराओं को इस गेज कम्युनिटी के साथ ना कोई लेना है ना कोई देना है।
आपके ख्याल में यह बिल किन के लिए लाया गया?
ये गेज कम्युनिटी के लिए, जो यूरोप में जिनका वो शादियां कर सकते हैं, वो एजेंडा इधर मुसल्लत किया जा रहा है।
और जो पार्लियामेंट में सियासतदान बैठे हैं,
हाँ जी,
उन्होंने इस बिल की मुखालफत नहीं की, आपका कोई उनसे शिकवा?
मेरा शिकवा तो यही है कि वो आंखें खोले और अपना मरना याद रखें कि ये हम गेज कम्युनिटी को यूरोप के भी कई ममालिक में इसको नहीं अप्रूव किया गया, तो पाकिस्तान इतना वो हो गया कि पार्लियामेंट में पड़े बगैर उसको वो कर रहे हैं। इनके अपने मुफादात होते हैं ना एक दूसरे को, हाँ ठीक है कर लो, या बाहर की वो अकवामे मुतहदा वाले इनको कहते होंगे करें जी ये क्यों ये नहीं कर रहे हैं, तो ये वजह बस जिसको मरना याद है ना, लूत अलैहिस्सलाम की कौम याद है ना, वो इस पे वो नहीं कभी भी।
हम ये कह सकते हैं कि ये जो बिल है ये बिल लाकर जो है वो आपके हकूक के ऊपर डाका डाला गया है।
बिल्कुल डाका डाला गया है, क्योंकि ये आपस में शादियां करेंगे और जॉब्स ये लेंगे, फंड ये लेंगे और ख्वाजा सराओं के नाम के ऊपर ये सारा कुछ करेंगे, तो इनको हुक्मरानों को हम क्या कहें, जिसको हुक्मरान को पता कि 1,24,00,000 पैगंबर आए थे, हुक्मरान कह रहे 1,24,00,000 पैगंबर आए थे, हुक्मरान कह रहे कि 12 मौसम है पाकिस्तान के, हुक्मरान कह रहे इंडिया पाकिस्तान जब बने अलहदा हुए तो 40,000 आबादी थी पाकिस्तान।
इमरान खान से आपको कोई शिकवा?
शिकवा क्या करने हैं, वो खुद भरपूर शिकवा खुद ही है, मैं क्या कहूँगी उनको।
बहुत शुक्रिया जी,
जी इंशाल्लाह मिलेगा। पाकिस्तान में बैठे हुए हैं अभी शरिया के जज बैठे हुए हैं, इंसाफ मिलेगा, इन गेज की कोई वैल्यू नहीं रहेगी इंशाल्लाह।
तो ये आपने सुना कि असल में जो ख्वाजा सरा हैं उनकी जो एसोसिएशन के सदर हैं वो ये कह रही हैं अलमास बोबी कि इस कानून का हमसे तो लेना देना नहीं है, ये तो गेज और लेस्बियन के लिए बनाया गया, वही ट्रांसजेंडर। तो वो हमें समझ नहीं आ रही कि डॉक्टर मोइज साहब को क्या पड़ी हुई है। असल में वो बार बार ये धोखा देने की कोशिश करते हैं कि वो ख्वाजा सराओं के स्पोक्समैन है, वो ख्वाजा सराओं के स्पोक्समैन नहीं है, उनकी अलहदा से एसोसिएशन बनी हुई है। भाई आपको तो जुमा जुमा आठ दिन हुई हैं, वो तो इस सोसाइटी के अंदर जो है वो सदियों से मौजूद हैं, वो अपने हकूक के लिए जो है वो जंग लड़ रहे हैं और अपने हकूक लेना जानते भी हैं। ये उन्होंने आपको क्लियर कट जो है वो मैसेज दे दिया है। तो आप खामखा उनके हकूक के लिए हलकान ना हो, हाँ आपको हकूक चाहिए ठीक है तो आप उसके लिए लड़ें, आप डंके की चोट कहें कि जी हमें ये चाहिए, क्यों घुमा फिरा के जो है वो बातें कर रहे हैं ठीक है, तो वाजे होके कहें कि जी हमें ये चाहिए।
गवाह की असि अपने बच्चे असि आप ही गवाह करांगे, सारा कुछ साढ़े ते उल्टा हुंदा जान दिया।
ये इनकी बेटी है शीजा, ये इनकी बेटी है, जबकि ये वो खातून है सोबिया जो कि हम जिंस परस्त है, जिसे आप लेस्बियन भी कह सकते हैं, और इसने इस लड़की के साथ शादी की, शादी करके उसके बाद इनके घर आई और इनको कहने लगी कि मेरा प्यार किधर है, मेरी शीजा किधर है, शीजा को उठाया और साथ ले गई अपने। पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर बनने वाले इस मुल्क में हम जिंस परस्ती, ये मगरिब की तरफ हम जा रहे हैं, और ये वो मुआशरा, ये वो रोती हुई माँ है जिसकी बेटी को वो वर्गला के ले गई है, ये वो मजबूर बाप है। जब ये उस औरत के पास जाता है, थाने में SHO के साथ दोनों बच्चियां बैठी हैं, माजी के मुताबिक दोनों बैठी हैं,
दोनों उसके पास बैठे,
और उल्टा उन्होंने माँ बाप पे पर्चा करवा दिया है, और ये पर्चा करवाया जी आपने मेरा प्यार जो है, मेरी जो वाइफ है शीजा, और ये सोबिया कह रही है वो जो हम जिंस परस लड़की है कि आपने उसको अगवा कर लिया है। तो माए भी कभी बेटियों को अगवा करती है, वो जो दोनों लड़कियां वो थाने में क्या कर रही थी।
या हम ड्रग्स को जो है वो नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, हर किस्म के सेक्स को, पोर्न एडिक्शन को जो है वो नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, इस कौम को हम तबाह करना चाहते हैं, तो सीधा जो है वो डंके की चोट कहें, वहाँ इंटरव्यू में जाके जो चोरी छुपे कह रहे हैं इशारे किनायों से। तो बहरहाल मजहबी जमातों के हवाले से हमने कहा था कि ये बहुत एक आप कह लें कि जी कमी कोताही रही है कि ये बिल कौमी असम्बली से पास हुआ और फिर सेनेट से पास हुआ और मजहबी जमातों की नाक के नीचे से पास हुआ और उनको पता ही नहीं चला। उसकी वजह यही है कि ये लोग फिक्री नहीं है। आम तौर पे यही कहा जा रहा है कि जी मजहबी जमातें जो हैं वो सीटें लेने के लिए, वजारतें लेने के लिए वहाँ पे चली जाती हैं पार्लियामेंट्स में, और फिर जो लोग भेजे जाते हैं और उनको दुनिया की कोई खबर ही नहीं है, मतलब जो मॉडर्न लैंग्वेज है उसको वो नहीं जानते, अंग्रेज़ी को नहीं जानते, कोई फिक्री इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड नहीं है उनका, कानून की कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है, तो उनको पता भी नहीं चलता चीज़ों का, और उनका वहाँ ना होना और होना वो बिल्कुल जो है वो बराबर एक तरह से हो जाता है। तो अभी भी जो है वो सेनेटर मुश्ताक साहब ने, जिनका कोई जमात इस्लामी का बैकग्राउंड था, कोई फिक्री बैकग्राउंड था, तो उन्होंने इस बात को समझा। हालांकि उस वक्त भी पार्लियामेंट में ये शोर मचा था, कुछ ख्वातीन ने कहा था, इस बिल के ऊपर एतराज़ात किए थे, लेकिन बहरहाल किसी के कान तक जूं ही नहीं रेंगी, किसी के कान तले जो है वो मजहबी जमातों को यही लारा लगाया गया कि जी ये तो असल में हिजड़ों और ख्वाजा सराओं के हकूक की बात हो रही है, बस ठीक है बस ये हाथ खड़े करें और पास करें और पास हो गया। ये सूरत हाल रही है और आइंदा भी ऐसा होता रहेगा। यहाँ तो थोक के हिसाब से इस किस्म के कवानीन पास होंगे, तो मजहबी जमातों को चाहिए कि ऐसे लोगों को वहाँ भेजें पार्लियामेंट में जो कानून की शुद्ध बुद्ध रखते हों, जो अंग्रेज़ी अच्छे से जानते हों, जो कोई फिक्री बैकग्राउंड रखते हों, जो मतलब जो है वो जो फिक्री इख्तलाफात हैं उनका मुतालिया रखते हों, जो माशरे के जो जदीद फितने हैं उनको अच्छे से जानते हों और उसको काउंटर करने के जो सलाहियत रखते हों। अगर ऐसे लोग जो है वो आपके पास नहीं है तो कम से कम जिन लोगों को आप भेज रहे हैं उनको आप तरबियत गाह तो करवाएं, कोई उनकी तरबियत तो करें, कोई फिक्री तरबियत तो करें, फिर उनको जो है वो वहाँ मैदान में उतारें ताकि उनके होने का कोई फ़ायदा तो हो। तो वरना तो बस मतलब दाढ़ी और इमामे के साथ आप वहाँ पर बैठ गए असम्बली में तो ठीक है, बरकत के लिए आप बैठ गए, लेकिन आपका होना ना होना अगर बराबर हो जाए और इस तरह से इस किस्म के कवानीन पास होते रहें और फिर जब पूरी इस पाकिस्तान में शोर मच चुका और फिर आपको भी ख्याल आए कि अच्छा ये कोई गलत काम हो गया और आपको भी आवाज़ उठाना याद आए, उसका क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। यकीन माने, अपनी गलती को माने, इस गलती को माने, अगर मानेंगे तो फिर इस्लाह की कोशिश करेंगे, और जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी फिक्री तरबियत गाहें करवाएं, उनको तरबियत दें ठीक है, उनको जदीद का जो है वो इल्म दें, जदीद चैलेंजेस से उनको रोशनास करवाएं, उनको जदीद जुबान सिखाएं, उन्हें जो है वो कानून की तालीम दें, ठीक है, एक एक चीज जो पार्लियामेंट में पेश होती है, आप तो एक खातून जो है वो पार्लियामेंट से बाहर निकलती है, उसे पूछा जाता है कि जी आज कौन सा बिल पास हुआ, तो उन्हें तो नाम भी नहीं पता होता कि कौन सा बिल पास हुआ, इस तरह से पार्लियामेंट से बिल पास हो रहे हैं। यानी ये लोग हमारे लिए कानून पास कर रहे हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि वो बिल जिसके बारे में मैंने आज ये राय दी है कि इसको पाकिस्तान का कानून बनना चाहिए, उसका नाम क्या था, उस एक्ट का नाम क्या था। ये वीडियोज आपको मिल जाएंगे सोशल मीडिया पर। अल्लाह ताला हमें समझ नसीब फरमाए और हमें जो है वो मुखलिस क़यादत नसीब फरमाए। और जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस बिल को पास करने में हिस्सा लिया, तो सही बात तो यही है, मेरी मजहबी तबके से रिक्वेस्ट ये है कि आप इस पे भरपूर स्टांस लें। किसी पॉलिटिकल पार्टी को जब तक वो अपने उससे रुजू नहीं करती, एलानिया रुजू नहीं करती और अपनी गलती नहीं मानती, उसको वोट बिल्कुल ना दे, उसको वोट देना हराम है, ये समझ लें। ये अल्लाह के गजब को एक तरह से दावत देने वाली बात है जब ये बात खुल के सामने आ गई। और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं, पीपल पार्टी जैसे, आज मैं ट्विटर के ऊपर जो है वो एक क्लिप देख रहा था, उनकी एक खातून जो है वो अभी तक उसको सपोर्ट किए जा रही हैं, और सिर्फ इसी बुना मौलवियों को क्या पता, मौलवियों आपको तो पता ही नहीं है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, पता ही नहीं है, पता नहीं तुम्हें क्या पता है। ठीक है, मतलब आप पूरा कानून उनके सामने वो रख देंगे, उसको पढ़ के सुना देंगे, ट्रांसलेट कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे, एक एक लफ्ज बयान कर देंगे, फिर भी कहेंगे आपको तो पता ही नहीं है क्या लिखा हुआ है। तो ये ऐसी जो है वो बेशर्म मखलूक है, बेशर्म मखलूक है, कोई शर्म नहीं है इन लोगों के अंदर, कोई हया नहीं है इनके अंदर। मतलब जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना कि इज़ालम तस्तही फसना माशे, जब शर्म खत्म हो जाए तो जो मर्जी जो है वो आप बकवास करते रहो। तो अब ये सूरत हाल हो रही है पॉलिटिकल पार्टीज की भी, लिबरल तबके की भी। और यही आप देखेंगे कि ये जो ख्वाजा सराओं के जो चैंपियन अपने तौर पे बने फिरते हैं डॉक्टर मोइस साहब, ठीक है, उनकी भी यही सूरत हाल है, कोई बात माननी नहीं है, नहीं मानना मतलब मेरा कौवा जो है वो सफेद है बस। तो अल्लाह ताला जो है वो इन फितना परवरों से हमें बचाए। और सही बात यही है कि इनका एक ही हल है, एक ही हल है, और वो ये है कि इनको आप वोट ना दें, बिल्कुल वोट ना दें। इनको वोट देना अल्लाह के गजब को दावत देने के मुतरादिफ है। एक तो यह कि गलती हो जाती है बंदा माफ़ी मांग लेता है, जैसे अली मोहम्मद खान की मैंने वीडियो देखी है, उसका अच्छा बयान था, उसने कहा कि यार मैं नहीं समझता कि ये जानबूझ के ऐसा हुआ है, लेकिन खतान ऐसा हो गया, चलें कोई बंदा इतना भी बयान दे रहा है उसको आप अप्रिशिएट करें। ठीक है, वो पीछे हो रहे हैं, अगर कोई पोलिटिकल पार्टी पीछे हो रही है चलें आप उसको अप्रिशिएट करें, लेकिन जो उसको अभी तक एडवोकेट कर रही है, ठीक है, अभी तक जो उसके हक में दलाइल दिए जा रहे हैं, इनको बिल्कुल वोट ना दें। ये वही हैं जो इस माशरे में होमोसेक्सुअलिटी की तरफ इस सोसाइटी को लेके जा रहे हैं। और होमोसेक्सुअलिटी वाले जो माशरे थे कौम लूत, हमने देख लिया अल्लाह का उनके ऊपर कैसे अजाब नाजिल हुआ। तो अगर हम उस अजाब से बचना चाहते हैं जो कौम लूत के ऊपर नाजिल हुआ, तो हमारा जो वोट है वो उनके खिलाफ जाना चाहिए, इनके हक में गया, तो कल ये ना हो कि हम लोग भी इनके साथ खड़े हों उस अजाब के मुस्तहिक बन के। और ये ड्रामे करते हैं, आगे से कहते हैं कि जी जब भी कोई बात ऐसी होती है तो ये मजहबी लोग शोर मचा देते हैं, एक मजहबी बयानियां घड़ के ले आते हैं। भाई हमने क्या घड़ा है, हमने आपको कोई कुरान की आयतें सुनाई, एक आधी हदीसें हमने आपको दिखाई, हमने तो सारा एक्ट आपको पढ़ के सुनाया है, ये आपके अमाल नामे हैं जो हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं, ये कौन सी हमने कहानी घड़ी है, ये तो आपकी बताई हुई कहानी है, लिखी हुई कहानी है, आपकी पब्लिश कहानी है जो हमने आपको सिर्फ पढ़ के सुनाई है और उसके ऊपर कमेंट किया, तबसरा किया, ये सूरत हाल है। अल्लाह आप लोगों को हिदायत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।